نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاء اللہ تعالی سورة البقرة آیت نمبر 168 سے 176 تک کریں گے. پہلے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ. یا ایہا الناس، اے لوگو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا بھی حرف ندا ہے اور یا ایوہا بھی یوز ہوتا ہے. یا ایوہا تب یوز ہوتا ہے جب آگے کے لفظ میں الف لام آ رہا ہو، اور یہاں پہ الناس الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس لیے یا ایوہا لگا. کلو، کھاؤ. مما، من اور ما دو مرج ہو گئے، مل گئے، تو مما بن گیا. اس میں سے جو فل ارض زمین میں ہے، حلالاً حلال، طیباً طیب پاکیزہ پاک، ہم کہتے بھی ہیں نا طیب ہے پاک ہے. ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو. لا کے بعد جب تا سے بات سٹارٹ ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے یہ فعل نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. خطوات، خطوات خط ہم کہتے ہیں نا، خط کھینچی جائے یعنی ایک لائن ہوتی ہے، تو راستہ بھی اسی طرح ہوتا ہے اور راستے پہ قدم رکھے جاتے ہیں، تو قدموں کی خطوات، قدموں کی. الشیطان، شیطان کے. انہو، بے شک وہ، لکم، لیے تمہارے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا، کھلم کھلا. انما، انما کلمہ حصر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا انا بھی یوز ہوتا ہے، بے شک ہم میننگ لکھتے ہیں اور انما میں بھی بے شک لکھتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے. انما جب آپ لکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ یہی بات ہے صرف، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں دس اینڈ اونلی دس، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے حصر کر دیا نا. حصر مطلب ہوتا ہے کنفائن کر دینا، تو یہ میننگ کو کنفائنڈ کر دیتا ہے کہ اونلی دس. انما یامرکم، یعنی اس کے سوا نہیں کوئی بات، کہ وہ یامرو وہ حکم دیتا ہے، امر سے ہے نا، وہ حکم دیتا ہے کم تم کو، بسو برائی کا. سو برائی ہے نا، یعنی کسی قسم کی بھی ایول چیز جس کو دیکھ کے کراہت ہو. والفحشاء، اور فحاشی کا، فحاشی آپ سمجھتے ہیں سب لوگ، یعنی بے حیائی. وَأَن، اور یہ کہ، تَقُولُ، تم کہو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، مَا جو، لَا نہیں، تَعْلَمُونَ، تم جانتے. وَإِذَا، اور جب، قِيلَ، کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، لَا لِيَ، ہم ان کے. لیکن جب بھی قَالَ، قِيلَ کے بعد لَا آئے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے سے. اتبعو، اتباع کرو، پیروی کرو، ما اس کی جو، انزلا نازل کیا، اللہ، ارحا کے اوپر پیش ہے، اللہ نے. قالو، وہ کہتے ہیں، قالو قالا بھی ہوتا ہے، قالو بھی ہے، تو فرق کیا ہے، قالا واحد ہے، قالو جمع ہے. اور قیلا کیا ہے، قیلا مجھول ہے، پیسیو ٹینس ہے، ایکٹیو ہے قالا قالو، اور قیلا پیسیو ٹینس یعنی کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے وہ نہیں بتایا گیا. ہمیشہ پیسیو ٹینس میں یہ نہیں پتا چلتا کہ کس نے کیا ہے کام، جیسے کھایا جاتا ہے یا کچھ اور ایسا دیا گیا، تو کس نے دیا یہ نہیں پتا. بل، بلکہ، نتبعو، ہم اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، ما جو، الفینا، الفا کہتے ہیں کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی، جس کے جو بھی مل جائے اس کو، ठीक है, यानी अपनी कोई सोच नहीं, बस चलते चलते जो भी रास्ते में आपके आगे आ गया, बस आपने उसको ले लिया, उसको कहते हैं अल्फा। तो अल्फा ही ना जो पाया हमने, अलैहि उस पर, आबाअना अपने आबा को, अपने आबाओ अजदाद को यानी बाप दादा, अवलव क्या भला अगरचे, काना हो आबाउहुम उनके आबाओ अजदाद, ला याकिलूना नहीं अकल रखते, शैअन किसी चीज की, वला और ना, यहतदून वो हिदायत याफ्ता हूं यानी उनको हिदायत मिली हुई हो, व मसलुल्लदीना और मिसाल उन लोगों की, कफरू जिन्होंने कुफर किया, का मानिन मसली मिसाल के, अल्लदी उस शख्स के है, यन इकु नून आइन काफ से है, ये नया लफ्ज है आपके लिए, ये असल में आता है जब चरवाहा शेपर्ड जो होता है वो अपनी बकरियों वगैरह को पुकारता है ना, वो जो हाँक लगाते हैं, जो आवाज लगाते हैं, वो है यन एकू जो पुकारता है। अब इसकी, अब हम यहाँ पे इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे यन एको, नाक कहते हैं पुकार को, और मैंने आपको बता दिया कौन सी पुकार, जो चरवाहा जब चिल्ला के कहता है उनको, बकरियों को बुला रहा होता है या हाँक रहा होता है, आगे ले जाने के लिए कुछ कर रहा होता है, तो वो एक हाँक लगाता है ना, आवाज बुलंद करता है, चिल्लाता है, तो यन एकू जो पुकारता है, बीमा उसको जो, ला यस्माउ नहीं सुनता, इल्ला मगर, दुआअन पुकार को, व निदाअन और निदा को आवाज को, सुम्मुन ये सुम्मुन बुकमुन उम्यून आप पहले पढ़ चुके हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्यून बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्यून अंधे हैं, फहुम ला याकलून तो वो, ला याकलून नहीं वो अकल रखते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू खाओ, मिन तय्यिबात तय्यिबात में से, पाकीजा चीजों में से, मा जो, रज़क़नाकुम रिज़्क़ दी ना हमने कुम तुमको, वश्कुरू और शुक्र करो, लिल्ला लिए अल्लाह के, इन अगर, कुन तुम हो तुम, इयाहू जैसे हमने इया क्या पढ़ा था ना वहां पे सूरह फातिहा में, तो यहाँ पे इयाहू सिर्फ उसी की, ताबुदून तुम इबादत करते हो, इन्नमा बेशक, हराम उसने हराम किया, अलैकुम तुम पर, अलमैता मैता को, मुर्दार को जैसे हम मैयत भी कहते हैं, व दमा और दम को, खून को, व लहमल खिंजीर और खिंजीर के गोश को, व मा और जो, ओहिल्ला किससे, हा लाम लाम से, ये वो हलाल वाला नहीं है, हा वाला नहीं, हा है, तो इसका माना क्या हुआ, यानी जो पुकारा जाए आवाज, नाम लेने के लिए आवाज बुलंद की जाए, किसी के नाम को पुकारना, तो उसको जो पुकारा गया भी ही साथ इसके, लिए गैर अल्लाह लिए गैर अल्लाह के, फमन तो जो कोई, इस तुर्रा यानी इस्तेरारी कैफियत, आप जानते हैं उर्दू में भी बोलते हैं इस्तेरारी कैफियत है, यानी मजबूरी की, कोई बहुत बेबस हो गया, मजबूर हो गया, उसको कहते हैं इस्तरारी कैफियत, एक्सेप्शनल केसेस जिनको कहते हैं, तो मजबूर किया गया, तुर्रा गैरा नहीं, बागिन बागिन यानी जैसे आप बागी कहते हैं, यानी रगबत करने वाला, चाहने वाला, वला आदिन और ना, आदि भी आप इसका माना लिख सकते हैं, और अदुव से, हद से बढ़ने वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि अदुव जो दुश्मन होता है वो भी हद से बढ़ जाता है, फला तो नहीं, इस्मा कोई गुनाह, अलैहि इस पर, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम बख्शने वाला मेहरबान है, इन अल्लदीना बेशक वो लोग, यकतुमूना कतमा कहते हैं छुपाने को, पहले भी पढ़ चुके हैं, यकतुमूना तकतुमूना ये आपने पढ़ा, बेशक वो लोग यकतुमूना जो छुपाते हैं, मा अनजल्लाह मा जो अनजला नाजिल किया, अल्लाह अल्लाह ने, मीनल किताब किताब में से, व यश्तरूना और वो ले लेते हैं, जैसे इश्तेरा होता है ना खरीदो फरोख्त, तो खरीद लेते हैं, भी ही बदले इसके, यानी बी का मतलब यहाँ पे साथ का नहीं, यहाँ पे बदले का है, क्योंकि बी के बहुत से माने, बदले ही उसके, किसके, जो अंजल अल्लाह मिनल किताब है। समनन कलीला, समन कीमत को कहते हैं, कलीला कलील से है, थोड़ी कीमत थोड़ी। तो समन सा के साथ जो होता है वो कीमत के लिए आता है। उलाई का यही लोग हैं जो मां नहीं, या अकुलूना वो खाते, फी बुतूनिहिम बतन की जमा बुतून, पेटों में, फी में बुतून पेटों, हिम उनके यानी अपने पेटों में, इल्ला मगर अन्नार आग वाला, और नहीं, युकल्लिमुहुमुल्लाह कलाम करेगा हम उनसे अल्लाह ताला, यौमल कियामत कियामत के दिन, वला युजक्कीहिम और ना वो तज़किया करेगा उनका यानी पाक करेगा उनको। तज़किया करना क्या होता है, पाक करना। वला हम और लिए उनके, वला हम अगर मैंने कह दिया तो क्या होगा, माने में कोई बदला आएगा, कोई चेंज आएगी माने में। वला हम अगर लंबा कर दिया इसको तो नहीं उनके लिए, अदाबुन अलीम दर्दनाक अजाब, तो ये तो बिल्कुल माना उलट हो जाएगा। तो वला हूं मैं, तो जल्दी से कहना ला को, तो वला वला और लिए, ला यहाँ पे लिए क्या, हूं उनके, अदाबुन अलीम अदाब दर्दनाक। तो बहुत जरूरी है कि हम देखें कि किस हर्फ को कितना लंबा करना है। उलाइक अल्लदीना यही लोग हैं, अल्लदीना वो जो, इश्तरा वो इश्तरा खरीद लिया जिन्होंने, अद्दलाला दलाला दौलीन पढ़ा था ना, गुमराही को, बिल हुदा बदले हिदायत के, वल अजाबा और अजाब को, बिल मगफिरा बदले मगफिरत के, यहाँ पे बदले का माना आ रहा है बी का। फमा तो क्या या कितना, असबराहुम सबर है उनका, आलन्नार ऊपर आग के, जालिका ये भी अन्नल्लाह बी बिकॉज के मानों में आ रहा है यहाँ पे, बवजह इसके, भी वजह इसके के। अब आप कहेंगे कि बी का माना क्या है, हमें क्या पता चलेगा कहाँ पे क्या लिखना है, तो आपको जब आयत देखेंगे तो उसके कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है। जैसे इस उस को लिखा नहीं होता, तो और तू लिखा नहीं होता, हमारे एक ही तरह लिखते हैं उर्दू में, लिखा नहीं होता कि ये कौन सा वाला तो है या तू है, लेकिन हम पढ़ते हैं वैसे। इस या उस लिखा नहीं होता, सिर्फ अलिफ सीन लिखा होता है, हमें पता चल जाता है ना। तो इसी तरह जब आप इसको देखेंगे आयत को, तो आपको समझ में आ जाएगा। दालिका ये भी अन्ना अल्लाह बवजह इसके के अन्ना बेशक, अन्ना और इन्ना एक ही माना होता है, ठीक है। अल्लाह बेवजह इसके के बेशक अल्लाह ने, नज़ल अल किताबा नाजिल किया किताब को। अब आप कहेंगे अल्लाह हु नहीं है यहाँ पे, तो अल्लाह ने कैसे आ गया। कुछ चीजें होती हैं जो पीछे कुछ अल्फाज आ जाते हैं जो आगे के लफ्ज के उस पे इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अल्लाह आया। नाजिल किया अल्लाह ने किताब को, बिल हक साथ हक के, व इन अल्लदीना और बेशक अल्लदीना वो लोग, इख्तलाफू जिन्होंने इख्तलाफ किया, फिल किताब किताब में, ल अलबत्ता, ल भी लिए के लिए भी आता है और यकीनन की बात करने के लिए भी, कि ऐसा यकीनन है, दोनों ल सेम ही लिखे जाते हैं। ल अलबत्ता फी में शिकाक बदबख्ती या मुखालफत, बईद दूर की। अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं हम तफसीर आयत नंबर 168 से 176 तक सूरतुल बकरा। हम इससे पहले सबक में पढ़ चुके हैं, जहां पे हमारी बात खत्म हुई थी, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के अलावा औरों से शदीद मोहब्बत करते हैं। और हमने ये देखा है इन आयात को पढ़ के, अल्लाह ताला ने हमें ये भी समझा दिया है कि शदीद मोहब्बत सिर्फ किससे होनी चाहिए, यानी बजाय इंसान धोखा खाए या किसी गलत चीज़ से मोहब्बत करके उसके बाद रोए पिछताए गम में मुबतला हो, अल्लाह ताला इंसान का सबसे ज़्यादा हमदर्द है। उसको पता है कि इंसान ने कहीं गलत जगह पे दिल लगा लिया ना, तो फिर बाद में बड़ा ही गम करेगा, बहुत दुखी होगा, बड़ा ही रोएगा, क्योंकि जो चीजें फानी हैं उनके साथ जिसने दिल लगा लिया वो तो फिर उससे जुदा हो ही जाएंगी। तो इंसान को फिर जो पछतावा होगा, या वो चीजें बेवफाई करेंगी इसी दुनिया में। तो जब इंसान बाद में दुखी हो तो उससे पहले ही उसको पता होना चाहिए कि असल जगह कहाँ पे है जहां उसका दिल लगना चाहिए, जिसमें कभी वो पछताएगा नहीं। याद रखें कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कभी दुखी नहीं होगा, कभी नहीं पछताएगा। वो आता है ना अय्यूब अलैहि सलाम के बारे में कि जब बीमार भी थे तो किसी ने पूछा कि ऐ अय्यूब, बीमारी के दिन अच्छे थे कि अब तुम्हें सेहत मिल गई है तो ये दिन अच्छे? दर फरमाया वो बीमारी के दिन बड़े ही अच्छे थे। उन्होंने कहा ये कैसा बंदा है जिसने ये ऐसी बात कर दी? मैंने कहा क्यों? कहते हैं अल्लाह ताला पूछता था मुझसे कि अय्यूब कैसे हो तुम, तो वो दिन बड़े प्यारे थे। तो यानी जब इंसान अल्लाह से दिल लगा लेता है ना, उसको फिर ये नहीं परवाह रहती कि मैं किन हालात में हूं। वो जो उसके रब के साथ उसका कनेक्शन होता है वो उसको प्यारा होता है, वो उससे खुश होता है, और उसकी जो सारी जिंदगी की जो डिजायर्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो सोच है, जो अमल है, वो सब बदल जाता है जब अल्लाह की जात महबूब हो जाती है। वो इंसान नहीं रहता जैसे दूसरे लोग हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, रहता इसी दुनिया में है, उसका दिल कहीं और होता है, वो रहता यही है, उसकी सोचें कहीं और की होती हैं। लोग चीजों की ख्वाहिश करते हैं, उनके पीछे मरते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और उन्हीं के पीछे अपने दिन और रात खपाते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, और उसकी सोच भी कुछ और है, उसकी ड्रीम्स भी कुछ और हैं, उसकी ख्वाहिशात भी कुछ और हैं, वो किसी और ही दुनिया में रहता है। फिजिकली तो यही होता है, मगर देखिए जब इंसान की ख्वाहिशात ही बदल जाए ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, उसको क्या मिल गया। अच्छा उसको ये मिल गया, उसको ये पोजीशन मिल गई, उसने ये पा लिया, वो इतना आगे निकल गया, आए मैं तो पीछे रह गया, फिर इन चीजों से ऊपर उठ जाता है, वो अबव होता है इनसे। उसकी शादी अच्छी जगह हो गई, वो सैरें करने चला गया, उसने प्लॉट खरीद लिए, उन्होंने इतना बना लिया, ये उसकी फिक्रें ही नहीं रहती। तो उसकी तो सोचें कुछ और हैं, उसने कोई और फील्ड तलाश किया जहां पे वो दौड़ लगा रहा है, बाकी दुनिया किसी और फील्ड में दौड़ लगा रही है, उसको नहीं परवाह किसको कितना मिल गया, किसने कितना पा लिया, जमा कितना कर लिया, बैंक बैलेंस किसका कितना हो गया, क्योंकि वो उसकी ये दौड़ ही नहीं है, वो इस रेस में है ही नहीं, वो रेस कहीं और लगा रहा है। तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आपने जायजा लिया अपने दिल का, यहाँ पे किसको बिठाया गया और यहाँ पे किसको बिठाना चाहिए, कि जिस दिन ये चीज सही हो गई ना, फिर आप देखेंगे कुरान पढ़ने का मजा ही कुछ और आएगा, फिर आप देखेगा कि कुरान कैसे दिल पे असर करेगा, फिर आप देखेंगे कि अमल करना कितना आसान हो जाएगा। ये बस फिर वो चीज आएगी, समेना व अताना, हमने सुन लिया, हमने मान लिया, बस, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। फिर ये आता है, जहां पे मोहब्बतों में कमियां होने लगे ना, ये मोहब्बत अल्लाह से कहीं दूर दूर है, दूर दूर से, फिर बड़ी बातें आती हैं, फिर कुछ समझ नहीं आती, फिर कुछ लॉजिक नहीं बनती, फिर बड़ा मुश्किल है, ये आ जाता है। तो यहां से पहले करेक्शन होगी तो आगे सब ठीक होगा, प्रॉब्लम यहां पे है, हम प्रॉब्लम कहीं और ढूंढते हैं, मसला यहां है। ठीक है, तो अल्लाह ने हमें दुख से गम से बचा लिया कि एक हस्ती इस लायक है कि उससे मोहब्बत की जाए, और वाकई वो इस लायक है। तो देखें सुभान अल्लाह, हम तो इतनी इतनी उम्रों को पहुंच गए, आप सोचें जितनी भी हम सबकी एज है, सोचें हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि हमने किससे मोहब्बत शदीद तरीन करनी है, वो भी हमें कुरान सिखाता है, अभी जो लोग कुरान की तरफ नहीं आते वो कहते हैं हमें तो सब कुछ पता है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि शदीद तरीन मोहब्बत किससे करनी, फिर क्या और पता होगा तुम्हें। ये भी एजुकेशन कुरान दे रहा है कि देखो इन चीजों में ना दिल लगाओ वरना रोगे पछताओगे, अल्लाह से मोहब्बत करो खुश रहोगे हमेशा, दुनिया दुखी भी होगी ना आपका दिल खुश रहेगा। जैसे मैंने आपको इमाम इब्ने तैमिया की मिसाल दी थी कि देखें कैद में जाने लगे हैं तो कह रहे मेरे मेरी जन्नत तो मेरे दिल में, वो तो मेरे से कोई नहीं छीन सकता। अब जाने लगे जेल में तो क्या कह रहे हैं, उनको जेल की परवाह नहीं, उनकी जन्नत उनके दिल में, और जन्नत क्या है उनकी, अल्लाह की मोहब्बत, वो तो साथ साथ है, उसको कौन छीन सकता है, उसको कौन निकाल सकता। तो इस चीज को बहुत, इस आयत को बहुत, इसके ऊपर तदब्बर करने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है, और कैसे ये मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह की बातें सुन के, अल्लाह की बातें सीख के, जिक्र की मजलिसों में बैठ के, नेक लोगों की सोहबतों में बैठ के, और वो चीजें, तमाम चीजें जो अल्लाह ताला से मोहब्बत में आपको बढ़ाती हूँ वो करके, अल्लाह के रास्ते में दे के, इससे भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती, और उन लोगों की बातें सुन के जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे उससे भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती, फिर अल्लाह के अस्माए हुस्ना में गौर व फिक्र करके उससे भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती। और फिर आपको कहा था मैंने कि ये आयत जो है ना जिसमें अल्लाह ने अपनी निशानियां बताई, आयत 164, ये बहुत गौर व फिक्र करने वाली आयत है, इससे भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है और बढ़ती है कि देखो मेरे रब ने मेरे लिए कितनी नेमतें की। मैं देखें इंसान उससे मोहब्बत करता है जो उसको बहुत कुछ देता है। आपको भी वो बचपन में वो अंकल और आंटी बहुत अच्छे लगते हैं जो तोहफे लेकर आते थे, जो गिफ्ट्स लाते थे ना, तो अल्लाह तला ने तो इतने तोहफे दिए हमें। जब इंसान इस चीज को रियलाइज करता है तो खुद ब खुद उसके अंदर मोहब्बत डेवलप होती है। फिर बताया गया कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं और दिल लगा लिए, वो कहीं औरों के पीछे अंधा धुंध चल रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनका अंजाम कयामत के दिन क्या होगा। इन्होंने अल्लाह को महबूब बनाने की बजाय किसी और को महबूब बना लिया। अल्लाह ताला ने हमें कयामत के दिन का नक्शा दिखाया, उनके आमाल क्या बन जाएंगे उनके लिए, हसरतें, यानी उनके आमाल, उनके जो काम है ना वो, अब उसका नतीजा क्या है, बजाय उसका नतीजा कोई निकलता कि कोई उनको जन्नत मिलती, उनको क्या मिल रहा है अपने आमाल की वजह से, हसरत हसरत, और उनकी हसरतें बढ़ती ही जाएंगी, चाहे क्यों ऐसा किया हमने। अल्लाह ताला हमें इन हसरतों से बचाना चाहता है, इसलिए हमें वहां की सैर एक दफा करा दी कि ये देख लो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए सुभान अल्लाह, कुरान पाक में ना बड़ा ही ये प्यारा स्लूप है कि अल्लाह ताला हमें हशर के मैदान में लेके जाते हैं फिर वापस दुनिया में लेकर आते हैं, ताकि इंसान, जैसे एक आप किसी मूवी में देखते हैं कि एक सीन कहीं पुराना दिखाया जाता है फिर अब इस टाइम में आ जाते हैं, मसलन पुरानी सदियों पहले की कोई चीज दिखाई जाती है फिर उसके बाद इस टाइम में लाया जाता है, तो एक वहां का सीन दिखाया गया फिर अब यहाँ पे लाया गया, ताकि इंसान उस जो वो सीन दिखाया था ना वहां पे जो नाकामी थी उससे आज अपने आप को बचा ले, क्योंकि दुनिया मजरातुल आखिर, दुनिया जो है ना आखिरत की खेती है, जो यहाँ पे बोओगे ना वही वहां पे काटोगे, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला जो वहां दिखाते हैं सीन और अब इसको वापस पीछे, वैसे इंसान वहां से कभी नहीं आ सकेगा वापस, लेकिन अभी टाइम है, वहां का सीन ऐसे दिखाया जैसे आपकी आंखों के सामने आ जाए कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, उनके दिल की कैफियत क्या है, उनको हसरतें हो रही हैं, वो पछता रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं, उनके डायलॉग भी सुना दिए हमें, अभी हम पहुंचे नहीं है वहां पे। कितनी बड़ी बात है, ये कोई आपको दुनिया का इल्म बता सकता है कि पता नहीं कब जब भी कयामत आएगी वो एक जहान होगा वहां पे कौन क्या बोलेगा, मुझे बता दे कौन सी साइंस, कौन सी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी, कौन सा मैथमेटिक्स, कौन सा फलसफा आपको ये बात बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। कि एक एक डायलॉग हमें यहाँ पे बता दिया गया कि वो कहेंगे लव अन्न लना करतन فنتبرى منهم كما تبرأوا منا. ये उनका डायलॉग है जो अल्लाह ने आज सुना दिया मुझे और आपको, तुम ना इस चीज में फंस जाना, ठीक है? आप इसके बाद अल्लाह ताला हमें दुनिया में लेकर आए हैं, और यहाँ पे एक ऐसी चीज की तरफ हमें तवज्जो दिलाई है जो लीड करती है इस अंजाम तक, ठीक है? ऐसी कोई चीज है जिसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, जिसका ख्याल ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उससे अमल वजूद में आते हैं, उससे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे आमाल। और वो क्या चीज है? वो चीज है जो हमारे अंदर जाती है, यानी हमारा खाना पीना। इसके ऊपर हमारी आमाल, हमारे अखलाक, हमारी सोच, हमारी तबीयतें, हम जिस किस्म की जो एनर्जी हमारे अंदर आती है, या जिस जिस किस्म की नेचर हमारी बनती है, आदत बनती है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हम खाते क्या। ठीक है, आज तो साइंस बताती है ना कि ये फूड खाओगे तो हाइपर हो जाता है, ये फूड खाते हैं तो इंसान सुस्त हो जाता है, ये फूड खाते हैं तो मोटापा आ जाता है। अब तो ये भी बताते हैं ना ये सारी बातें, तो ये तो कुरान ने पहले ही बता दी। देखें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत नंबर 168 में, अल्लाह ताला जो हम पढ़े इसके ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाना। या अय्युहन नास, ए लोगो, कुलू, खाओ। कुलू है ना, कुल होता तो एक के लिए होता, कुलू सारे के सारे, सब इंसानों को क्या कहा जाता है? खाओ क्या? मिम्मा फिल अर्थ, जो जमीन में, उसमें से खाओ, लेकिन दो शरायत के साथ, हलालन तय्यबन, हलाल भी हो तय्यब भी हो। किसको कहा जा रहा है? आप सोचेंगे मुसलमानों को कहा जा रहा होगा कि हलाल खाओ, नहीं, यहां पे किसको कहा जा रहा है? सारी इंसानियत को। आपको क्या पता चला इससे? इससे पहले भी हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं, पहले पारे में, या अय्युन्नास उबुदू रब्बकुम, सारे इंसानों इबादत करो, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया गया था ना, यहाँ पे भी या अय्युन्नास है। इससे पता चलता है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये एड्रेस करता है पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी इंसानियत को, सब इंसान। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा मजहब होगा जो सारे इंसानों का हमदर्द हो, सिर्फ अपने मानने वालों का नहीं? ये नहीं कहा गया है मुसलमानों तुम सिर्फ खाया करो, बाकियों के लिए ये सब कुछ नहीं है, बाकी जाएं जहां मर्जी जो मर्जी खाएं, इनकी तुम्हें नहीं परवाह करने की जरूरत। या अय्युहन नास, नास में वो भी लोग हैं जो काफिर हैं, नास में वो भी लोग हैं जो मुशरिक हैं, नास में वो भी लोग हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी भी भलाई रखी, क्योंकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, खाना पीना, इसी से फिर आगे उनके अमल वजूद में आएंगे। तो उनको भी कहा गया कि तुम अच्छा ही खाओ, जो भी जमीन में तुम्हारे लिए भी है, अनास सबके लिए, यानी सबके लिए। तो हम कहते हैं ना कि हम काफिर को नहीं देंगे, मुसलमान को सिर्फ खिलाएंगे, अल्लाह ने काफिरों के लिए भी रखा है ये जो जो कुछ जमीन में, वो भी खाएं पिए, उनको भी इजाजत। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम मुझे मानते नहीं हो, मैंने नहीं तुम्हें खिलाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, आपने पहले पारे के एंड में देखी थी ना, अल्लाह ताला जो सिर्फ तेरे ऊपर ईमान लाए उसको देना ये फल और ये सारा रिस्क, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, सबके लिए ये, इस दुनिया में सबके लिए, आखरत में मगर ये सबके लिए अल्लाह की नियमतें नहीं होंगी, ठीक है? तो या अय्युन्नास कुलू, खाओ, इसका मतलब है अल्लाह ताला की तरफ से खाने पीने पे कोई ममानियत नहीं है। सबसे पहली बात हमें ये पता चली, क्योंकि जब बाज दफा लोग दीन की तरफ आते हैं तो वो क्या कहते हैं, तो पता नहीं इसमें ही नेकी है कि हम ना कुछ खाएं ना कुछ पिए, कोई अच्छा खाना हमें नहीं खाना चाहिए, बस बासी रोटी खाएं, सूखी रोटी खाएं, ये तकवा है, और हम कपड़े भी बस सिर्फ सफेद लिबास पहन के एक तरफ बैठे रहें, कोई हमने अच्छे कपड़े नहीं पहनने, कोई हमने कोई नेमतों को इंजॉय नहीं करना, ऐसा नहीं है, इसमें कोई तकवा नहीं है। कुलू, खाओ, अल्लाह ताला ने कहा है, मिम्मा फिल अर्थ, जो कुछ जमीन में इजाजत दी है आपको, जो जो भी जमीन में है आपके लिए, सब खाओ, लेकिन क्या शर्त रखी? हलाल और तय्यब खाना, हलाल, सबसे पहली शर्त हलाल है। यानी हलाल अशिया कौन सी है वो हलाल का लफ्ज पहले आपको बताती हूँ किससे है, हिलुन से है। हिल कहते हैं किसी गिरा को खोलना, और यानी इंसान के लिए कोई चीज हलाल कर दी गई ना तो गोया गिरा खोल दी गई, बल्कि हिलुन नहीं लिखे हल्ला लिखे, हल्ला हा के ऊपर जबर डाले, यानी पाबंदी हटा दी गई उसके ऊपर से। अब ये कौन पाबंदी उठाता है, कौन बताता है कि क्या चीज हलाल है, ये अल्लाह ताला बताएगा ये कौन सी चीज हलाल है, हलाल के जुमरे में आती है। और नंबर टू, जो तय्यब है, पाकीजा है, पाक है, वो पाक के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यानी पाक में ये भी है जो लजीज है, टेस्टी है, पाक में ये भी है जो आपका दिल चाहता है खाने का, आपको आपको यानी एक चीज है ना, मिसाल के तौर पे हम जो खाना खाते हैं वो हमारा स्टेपल फूड है। अब हम किसी और जगह का, मसलन अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं, उनका किसी और तरह का खाना होता है, हमारे दिल उसको नहीं चाहता खाने को, तो अब हमारे लिए नहीं है जरूरी कि हम वो खाएं, तो हमारी तबीयत उसकी तरफ नहीं मायल होती। फिर तय्यब में वो भी है जो जिस्म को जरर ना पहुंचाए, ठीक है, वो भी है यानी जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए, वो भी तय्यब है। अब आप देखेंगे कई चीजें हम आज खाते हैं जो हमें पसंद भी हैं, जो लजीज भी लगती हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें शुगर बहुत है या उनके अंदर ऐसी फैट है या उसके अंदर ऐसी चीजें हैं, मसलन किसी के लिए कोई चीज हो सकती है, किसी के लिए कोई हो सकती है, मसलन किसी को अगर कोई बीमारी लगी हुई हो तो उसके लिए कोई ऐसी चीज है जो उसको नहीं सूट करती, तो वो नहीं खाए, वो फिर उसके लिए वो तय्यब नहीं है, ठीक है। और हलाल चीज का तो आपको मालूम है कि जो शरीयत ने कह दी है कि ये हलाल है, याद रखिए जो चीजें शरीयत ने कह दी है ना कि वो हलाल है, वो तय्यब है, बेसिक्स में अपनी बुनियादी तौर पे वो तय्यब है। अनलेस कि कोई चीज, मिसाल के तौर पे आप एक चिकन है वो हलाल है, वैसे हलाल है, लेकिन आपने उसको जिबा ही नहीं किया, तो अब वो हलाल नहीं, वो तय्यब नहीं रहेगा। या एक चिकन है वो वैसे तो हलाल है लेकिन वो गल सड़ गया है, ठीक है, तब भी वो तय्यब नहीं। तीसरी चीज ये कि जब आपको खाने को कहा गया ना कि कुलू मिम्मा फिल अर्थ, तो इसमें सिर्फ ऐसे खाने से मतलब नहीं है, बल्कि इसमें ये भी सेकंड माना ये है, यानी तुम्हारी कमाई हलाल हो, कुलू वो खाओ जो हलाल और तय्यब हो, यानी तुमने जो कमाई की हो वो ऐसी हो जिसमें हलाल हो और तय्यब हो, यानी इंसान की कमाई के अंदर किसी का हक ना मारा गया हो, कोई लूट खसूट की कमाई ना हो, वो कमाई खाओ, यानी ये मतलब है। और इसी तरह मिलावट, इसी तरह रिश्वत, इसी तरह सूद की कमाई, इसी तरह शराब की कमाई, इसी तरह हराम चीजों को बेच के उनकी कमाई, नापाक चीजों को बेच के उनकी कमाई, झूठ बोल के जो कमाई की गई हो, किसी को चीट करके जो कमाई की गई हो, उससे कुछ जो फायदा आपको मिला हो, धोखा दे के किसी को के साथ फ्रॉड करके जो कमाई की गई हो, हेरा फेरी जिसको कहते हैं वो करके कमाई की गई हो, करप्शन की कमाई की गई हो, जिसमें भी किसी के हकूक मारे गए हैं, वो कमाई सारी हराम हो गई ना, तो अब उस हराम कमाई से जो चाहे आप जबीहा चिकन ले रहे हैं, चाहे आप जिबा किया हुआ बीफ ले रहे हैं, वो सब हराम ही हो गया, वो कमाई ही हराम है, तो ये हराम हो गया। तो ना सिर्फ वो फिजिकली हलाल और तय्यब होनी चाहिए, बल्कि कमाई भी हलाल और तय्यब हो, ठीक है, ये बात समझ आ गई। फिजिकली खाने में कैसी हो कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने भी उसको हलाल किया हो और पाक भी हो। आज इस बात को पढ़ के इतना शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान बनाया। क्यों? वो तो बहुत सी वजूहात है, लेकिन एक वजह ये, अल्लाह ताला ने हमें ये भी बता दिया अपने खाना पीना क्या है, क्योंकि आज कुछ कौमें जो हैं सांप खा रही है, ये इसको चूहे खा रही हैं, चमगादड़े खा रही हैं, मेंढक खा रही हैं, उनके सूप पी रही हैं, जिन चीजों से घिन आती है, कराहत आती है, वो उन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या फिर शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें मुसलमान बनाया, हमें इसका मतलब है इंसान, तेरी तो इतनी भी अकल नहीं है कि तुझे ये पता चले कि खाना क्या मैंने, तुझे तो इतनी भी सेंस नहीं। हम बड़े अपने आप को अकलमंद समझते हैं ना, हमें क्या शरीयत की जरूरत है, हमें क्या कुरान के, हम खुद ही इतने अकलमंद हैं, हमें नहीं अपना पता चलता। अल्लाह ने जब अकल दे दी तो फिर क्या, तुम्हारी अकलों का तो ये हाल है। ये अभी ये बहुत बड़े सिविलाइज्ड कौमी है, बहुत तरक्की याफ्ता कौमी है, लेकिन ये तक नहीं पता कि खाना क्या है। अल्लाह अकबर। और जो कौमें मुर्दार खाती हैं, ये तक नहीं पता कि मुर्दार है ये, हम इसको ना खाएं। कितनी नापाक चीजें हैं जिनको खाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, इस चीज के ऊपर शुक्र अदा कीजिए आज, वरना कहीं उन्हीं के घरों में वैसे ही पैदा हो जाते तो आज हम भी वही छिपकलियां और मेंढक खा रहे होते, जिनको ये सेंस नहीं है कि क्या खाना है। अल्लाह ताला ने तो पूरी इंसानियत की भलाई करी कि सारी इंसानियत को बता दी ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि जो चीज अल्लाह ताला हलाल कर देते हैं ना, जिस चीज को हलाल किया है, याद रखिए उसके अंदर इंसान के लिए नुकसान नहीं है। ये जो आज कहते हैं ना, आप ये रेड मीट ना खाएं, फलाना ना खाएं, ये ना खाएं, आपको पता है ये क्या बात है, जब हम ओवर कर देते हैं किसी चीज को तो फिर उसमें नुकसान होता है। आज कहते हैं वो चिकन ना खाएं जो ब्रॉयलर है, ये ना खाएं, वो भी क्या है, अल्लाह ने थोड़ी ऐसा पैदा किया है, और तो हमने खुद इस तरह के उनको इंजेक्शन दे दे के और उनको कैसी फीड खिलाते हैं जिससे वो इतने बड़े हो जाते हैं और वो नुकसानदेह बनते हैं। तो ये इंसानों के कसूर हैं जिनकी वजह से वो चीजें नुकसानदेह बन गई, अल्लाह ने नहीं नुकसानदेह बनाई कोई चीज। आज नमक और चीनी को कहते हैं ये व्हाइट पॉइजन है, अल्लाह ने नहीं ये नुकसानदेह बनाई, ये इंसानों ने खुद बनाई हुई है, इंसानों ने खुद ऐसी चीजें इजाद की हैं, चीजों को ब्लीच किया है, और आज क्या कह रहे हैं, अफसोस होता है, आज कह रहे हैं बेसिक्स पे जाओ वो ही तुम्हारे लिए ठीक है। आटे को ब्लीच कर दिया, उसको चावल को ब्लीच कर दिया उसको, आज कह रहे हैं ब्राउन राइस खाओ, आटे को कह रहे हैं होल व्हीट खाओ, सब होल व्हीट के, जो तुमने ये बना के रख दिया तो जहर बना दिया ना इंसानियत के लिए। जिस तरह से गाय और उनको परवरिश की जाती है, जैसे उनको कभी अगर आपने ये चीज देखी हो, मैंने ये देखी थी इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री, कि किस तरह से गाय वगैरह को रखा जाता है, काफ्स को रखा जाता है छोटे से पिंजरे टाइप जगह के अंदर, वहीं पे वो अपनी लीद करते हैं, वहीं पे वो खड़े रहते हैं, वहीं पे वो ग्रो करते हैं, टीके लगा लगा के उनको बड़ा कर देते हैं, और फिर उनको फिर कहते हैं बीफ ना खाओ। अब आप देखें खुद इंसान ने अपनी बीमारियों के काम किए, फिर फिश, सब बहुत अच्छी फिश, बहुत अच्छी, अब वो कहते हैं फिश भी ना खाओ, क्यों, इसलिए कि फार्म्स में उसको रेज कर रहे हैं और वहां पे उनको वो चीज खिला रहे हैं जो कि उनके लिए सही नहीं। आज तक ये जो बीमारियां पैदा हुई किन वजह से पैदा हो रही, बाकी वो अलग बात है कि क्या वो किसी के ऊपर वबाल है उनके अमाल का या क्या है, वो एक अलग बात, लेकिन अगर पहले देखा जाए सार्स बीमारी आई थी किस वजह से पैदा हुई, आज देखें ये जो कोरोना वायरस है किस वजह से है, इसलिए कि हलाल तैयब नहीं खाते, ऐसा ही है ना। जब अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ोगे तो ये नतीजा निकलेगा, पूरी इंसानियत को कह दिया गया, क्योंकि पूरी इंसानियत की फलाह इसी में है, तुम बच जाओगे अगर ये काम करोगे, तुम नहीं मानते अल्लाह को, नहीं मानते ना मानो, लेकिन ये काम तो करो। इसमें आज सारी दुनिया परेशान है कि क्या करें इसका, लेकिन देखो इस एक आयत पे अमल करने से इन सब चीजों से बच सकते थे। एड्स, एड्स क्यों होती है सबको पता है, वो भी हराम में मुंह मारने से होती है, हराम काम करने से, जब एक इंसान निकाह के बंधन में नहीं बनता लेकिन बस अपने आप को आजाद छोड़ देता है और जगह जगह जाके बुराई का काम करता है, बेहयाई करता है, अब वो देखें वो भी हराम में पढ़ने से हुआ। तो अल्लाह ताला के अहकामात में दुनिया की भी भलाई है इंसान की, आखरत की तो है ही है, दुनिया में भी तुम बच जाओगे बड़ी मुसीबतों से, अगर तुम अल्लाह के अहकामात पे आओगे। तो ये कुरान पूरी दुनिया के लिए भलाई का पैगाम देता है। अब भुगत रहे हैं ना दुनिया वाले, अब परेशान है, अब भागे फिर रहे हैं, क्या करें इसका। लेकिन देखो ये एक आयत ने बता दिया, वो हमें खुद नहीं इन आयतों का पता, उनको हमने क्या बताना है कि तुम्हारे लिए भी यही पैगाम है, हलाल और तय्यब की तरफ आओ। आज देखें ये सिर्फ एक एक आपको मिसाल देती हूँ, आज इंसानों ने अपने लिए कैसा जहर कैसे कैसे अपने लिए खुद इजाद किए हैं। हाई फ्रक्टोज जो कॉर्न सिरप है, आपकी हर चीजों में ये सस्ता है और ये बहुत ज्यादा मीठा है शुगर के भी मुकाबले में। शुगर भी खुद ही बनाई हुई है लेकिन ये उससे भी ज्यादा सस्ता और उससे भी ज्यादा मीठा है। आपके सीरियल्स में, आपके जितने ये सोडाज हैं उनके अंदर, आपकी कैंडी बार्स, आपके जूसेस, आपकी ब्रेड्स, आपके ये फ्रोजन फूड, आपके सीरियल, केचप्स, जैम, जेली, सब में। और आपको पता है ये क्या करता है? मोटापा इससे है, डायबिटीज इससे है, हाई ब्लड प्रेशर इससे है, हार्ट डिजीज इससे है, वो कहते हैं कैंसर भी इससे कॉज हो रहा है। और एक बहुत बड़ी बात जो आपको बताना चाहते हैं उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आदमियों के अंदर जो नामर्दगी है वो इसी वजह से पैदा होती है। और ये आज इतना बड़ा मसला बन चुका है, इसको पूरे यूरोप ने बैन किया हुआ है लेकिन यहाँ पे ये अलाउड है। आप अपने घरों में देखें चीजों में कितना कितना डाला हुआ है, हम शौक से खाते हैं। तो हम अल्लाह ने कोई चीज ऐसी नहीं पैदा की जमीन के अंदर जो ऐसी नुकसानदेह हो। जितनी भी हलाल और तैयब चीजें हैं सब इंसान के लिए फायदेमंद, ये इंसानों ने खुद बनाई है। अल्लाह ताला ने तो नेचुरल शुगर के इंतजाम किए हैं फ्रूट्स की सूरत के अंदर और कितनी चीजों में, लेकिन इंसान ने खुद बनाए ना अपने लिए। आपने आपको मारने के लिए, अपनी सेहत की खराबी के लिए खुद इंतजाम किए। तो ये फिर जो हम आज भुगत रहे हैं बीमारियां, ये हमारे अपने हाथों की कमाई का नतीजा है। क्यों हम कहते हैं कि पहले जमाने में तो कभी सुनने में नहीं आया था, आज इतना सुनने में आ रहा है, क्यों हम कहते हैं? इसलिए कि पहले जमाने में ये इस तरह की चीजें नहीं थी इजाद। आज हमारी कोई पार्टी हमारे सोडास के बगैर नहीं होती पूरी, बल्कि बहुत शौक से दिया जाता है, कोक और पेप्सी को प्रमोट किया जाता है ना। और हम खुद जानते हैं चीजों के नुकसान, फिर उसके बाद हम वही करते हैं, वही खाते पीते हैं। जितने प्रिजर्वेटिव्स आप देख लें, प्रिजर्वेटिव सिर्फ बीमारियां ही हैं, हम कितनी प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें हमारे घरों में। तो नेचुरल से जब हम हट गए तो फिर ये हुआ। तो तैयब के अंदर वो भी सारी चीजें जो हेल्दी हैं और जिसके अंदर कोई इंसान की सेहत का नुकसान नहीं हो। अल्लाह ताला ने कितनी हमारे लिए खैरख्वाही की है ये मैसेज दे के कि इनमें से खाओ, ना कि ऊट पटांग चीजें ऐसी खा के अपनी सेहत बर्बाद करके उसके बाद फिर हम रोते। तो हलाल खाना इतना ज्यादा जरूरी है। अच्छा इससे फायदा क्या होता है? ये डायरेक्ट असर करता है इंसान के अमल पे, याद रखें। चाहे वो हलाल कमाई है उससे भी असर आता है, चाहे वो हलाल फूड है फूड की सूरत में, चाहे वो गोश्त है या जिस किस्म का भी खाना है वो भी सारा हलाल। और अब हमारे लिए आसानी इस तरह है कि हम सबके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं किसमें क्या है। अब ये हमारे लिए तय्यब भी है कि नहीं है, हलाल तो सारी चीजें हैं वो तो हम देखते हैं, तय्यब है कि नहीं ये भी देख सकते हैं। तो अब देखें जो कमाई है वो भी हलाल हो, इसलिए कि जब इंसान की कमाई हलाल नहीं होती तो एक हदीस आपको इस सिलसिले में बताती हूँ, उससे आपको काफी अंदाजा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तिलावत फरमाई थी ना, तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। मुस्तजाबुद दावात कौन होता है? जिसकी दुआएं कबूल होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐ साद पाक चीजें और हलाल लुकमा खाते रहो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाता रहेगा। यानी इंसान अगर हलाल खाएगा तो दुआएं कबूल होंगी, हलाल नहीं है तो दुआएं दुआओं की कबूलियत नहीं होगी। बल्कि एक जगह पे आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, हराम का लुकमा जो इंसान अपने पेट में डालता है उसकी नहुसत की वजह से 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। जो गोश्त पोस्त हराम से पला है वो जहन्नमी है। अब ये चाहे हराम कमाई है, चाहे हराम इंग्रेडिएंट है। हम चीजें उठा उठा के ले आते हैं शेल्फ से और हमें पता ही नहीं होता कि ये इनमें हराम इंग्रेडिएंट है, या हम वो कमाइयां खा रहे होते हैं जो हराम होती हैं। अब चाहे वो चीज हलाल है लेकिन अगर कमाई हराम है तो फिर क्या? इसी तरह कमाई हलाल है लेकिन अगर चीज ही हराम है तो फिर तो सारा खराब हो गया ना। तो इसलिए ये चीज देखनी कि मुझे इस दौर में हलाल खाना है और इसको ढूंढना है, ये भी एक इबादत है क्योंकि तो ये इस आयत पे अमल है कि ना आज हराम वाफिर मिल रहा है बहुत जगह पे। हलाल के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। हराम की तो चीजें भी बहुत सारी हैं, जॉब्स भी बहुत सारी हैं, बिजनेस भी बहुत सारे हैं, फूड भी बहुत किस्म की हैं शेल्फ्स पे पड़े हुए जो हराम में हैं। लेकिन जब इंसान ये फिक्र करता है, और ये फिक्र सिर्फ उसी को हो सकती है जो मोमिन है, जब ये इंसान फिक्र करता है ना कि नहीं अल्लाह ने ये हुक्म दिया है अब मैंने हलाल ही खाना है, तो इसका इफेक्ट होता है इंसान के ऊपर। और ये इंसान को की इबादत में आप देखेंगे बेहतरी आएगी, आपके आमाल में बेहतरी आएगी, आपकी दुआएं कबूल होने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक जिस्म जो है समझ लें ऐसे, जैसे आप कोई बर्तन समझ लें, अब इस बर्तन में गंद भर देंगे तो बर्तन का ढक्कन खोलेंगे क्या आएगा? बदबू ही आएगी ना, खुशबू तो नहीं आ सकती। और ये जो हमारा खाना है ये हमारे पूरे जिस्म में दौड़ता है ना, इसी से खून बनता है। खून बनता है कि नहीं? वो हमारे कहाँ कहाँ जाता है खून? पूरे जिस्म में दौड़ता है। वो चीज जो पूरे जिस्म में दौड़ रही है अगर वो हराम से बनी होगी तो इस जिस्म से अच्छाई कहां से निकलेगी? फिर कानों को अल्लाह की बात कहाँ अच्छी लगेगी? तो उसको हराम ही अच्छा लगेगा जिसने हराम खाया होगा। फिर जुबान पे गंदी बातें ही निकलेंगी, कोई अच्छी बात तो नहीं निकल सकती क्योंकि सारा जिस्म गंदगी से भरा हुआ। फिर आंखों को क्या अच्छा लगता है? हराम देखना अच्छा लगता है उनको। कोई बहुत ऐसी चीजें तो अच्छी नहीं लगती जो अल्लाह ताला ने कही हो कि यहाँ ये यहाँ पे नजर डालो यहाँ ना डालो, वो तो नहीं उनको अच्छा लगेगा। तो इसलिए जरूरी है कि इंसान हलाल का एहतमाम करे। और एक हदीस आती है कि जब एक बंदा एक मुसाफिर है, मुसाफिर है, अब मुसाफिर की आपको पता है ना दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन एक मुसाफिर ऐसा है कि वो उसके बाल बिखरे हुए हैं, वो जिस्म पे खाक है, कपड़े खाक आलूद हो चुके हैं, और वो अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा है। अब बहुत दुआएं करता है, बहुत दुआएं करता है, या अल्लाह लंबा सफर करके आया है, गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है, लेकिन हदीस में है उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी गिजा सब हराम है। फिर ऐसे में उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? समझ आए? यानी हालांकि मुसाफिर की दुआएं कबूल होती हैं लेकिन उसकी दुआ नहीं कबूल हो सकती क्योंकि उसके ये सब चीजें हराम हैं। तो फिर सोचें कि दुआओं से भी हम महरूम हो जाते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो, जब हम इस तरह से हराम कंज्यूम करेंगे। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और देखो शैतान के कदमों की पैरवी ना करना। इत्तेबा कहते हैं किसी के फुटस्टेप्स पे चलना, जैसे कोई एक मिसाल के तौर पे कोई एक रेत पे चल रहा है, उसके कदमों के निशान है ना, तो आप उसके निशानों के ऊपर अपने पांव रख रख के चलें, ये इत्तेबा होती है। तो कहा गया खुतुआत शैतान की इत्तेबा ना करना। अब यहाँ पे तो कहा जाना चाहिए था ना कि ये खाओ और देखो ये ना खाना, लेकिन कहा क्या जा रहा है? खुतुआत शैतान पे ना चलना, ये क्या बात है? इसलिए कि शैतान सबसे पहले इंसान से क्या काम कराएगा? हराम खिलवाएगा। क्योंकि जब इंसान हराम खा लेता है ना तो फिर उसका स्टेयरिंग शैतान के हाथ में आ जाता है। जाहिर है इसकी गिजा हराम है, उसका गोश्त पोस हराम हो गया, उसकी ना दुआएं कबूल हो रही है ना उसकी इबादत कबूल हो रही है। 40 दिन की तो वैसे ही नहीं नमाज कबूल हुई, तो अब क्या उसके लिए रह गया? ना, इब्ने मरदवे की यह हदीस है कि एक हराम लुकमे से जिसे इंसान अपने पेट में डालता है 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती, एक हराम लुकमे से। तो फिर क्या इंसान की क्या और अमल रह गया फिर उसका, दुआएं वैसे ही नहीं कबूल हो रही, तो वो तो फिर शैतान के हाथों में चला गया ना, उसके हाथों में खेलेगा फिर जिसको अल्लाह ने छोड़ दिया। तो कहा गया उसकी खुतुवात पे ना चलना। अच्छा अब ये वला तत्तबिउ शैतान के, नहीं कहा गया तुम शैतान की पैरवी ना करना, उसके कदमों पे ना चलना, ये कहा गया इसलिए कि शैतान कभी भी जंप नहीं लगवाता आपसे, याद रखिएगा ये बात, एक छोटा सा स्टेप उठवाता है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ये तो छोटी सी चीज है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, सभी तो कर रहे हैं, ऐसा भी क्या हो गया, छोटा सा तो काम है, ये एक स्टेप उठा लिया ना, उसके बाद थोड़े दिन उसी पे खड़े रहेंगे, कुछ अरसा गुजर जाएगा फिर दूसरा स्टेप उठवाएगा। अच्छा अब यहां तक आ गए, चलो ये भी कर ही लेते हैं, फिर वो, फिर उससे तीसरा, फिर उससे चौथा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बुराई का एक दरवाजा जब इंसान खोलता है तो और कई दरवाजे खुल जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई शराब खाने जाता है, पब जाता है, वहां पे शराब पीता है, अब क्या है वहां से उसको और बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे, जिना के भी अड्डों का पता चल जाएगा और हराम कामों के भी अड्डों का पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि जुआ कहाँ पे खेलते हैं, ये सब वहीं से पता चलेगा, तो मस्जिद का पता तो नहीं कोई देगा उसको वहां पे बैठे हुए, क्या ख्याल है। इसी तरह जब इंसान नेकी का एक दरवाजा खोलता है, मिसाल के तौर पे आपने कुरान क्लास ज्वाइन कर ली, वहां से आपको हिफ्ज का पता चला, वहां से आपको तजवीद की क्लासेस का पता चला, वहां से आपको सदका और खैरात के कई प्रोजेक्ट्स का पता चल गया, वहां पे आपको किसी और कोई नेकी के काम का पता चल जाता है, तो कितने दरवाजे खुल गए, किसी का पता चल गया, किसी का जनाजा है, किसी की बीमार पुरसी करने का ख्याल आ गया, किसी बीमार के यानी इतला मिल गई, तो कितने दरवाजे खुले ना। तो याद रखिए वो कभी भी इतनी लंबी जंप नहीं लगवाएगा आपसे कि वहां तक पहुंच जा बुराई में, नहीं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। आपको बरसीसा की कहानी तो पता होगी, पहले भी सुनाई भी है मैंने, बरसीसा की जो राहिब था, मॉन्क था, जिसको शैतान ने पागल बना दिया था, मैं मुख्तसर बता देती हूँ अभी, ये बरसीसा ना एक बड़ा ही नेक आदमी था पुराने जमाने में, इतना नेक था वो कि उसने दुनिया छोड़ के रहबानियत इख्तियार कर ली थी, अपना अकेला रहता था, अल्लाह की इबादत बहुत ज्यादा करता था। तो क्या हुआ कि एक कुछ भाई थे, उन्होंने जंग पे जाना था, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले थे, उनकी एक जवान बहन थी, उन्होंने कहा हम अपनी बहन का क्या करें, इसको कहीं छोड़ के जाएं, किधर छोड़ के जाएं, तो उन्होंने कहा ये ऐसा है कि वो राहिब इतना नेक है, इससे ज्यादा अच्छी क्या जगह हो सकती है कि हम वहां पे छोड़ जाएं, चलो उसके पास रहेगी, सेफ होगी। उन्होंने उसे बात की, उसने पहले तो कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा उन्होंने कहा फिर हम किधर छोड़ें, ये तो इस तरह। तो शैतान उसके पास आया और उसको कहा कि देखो तो मान जाओ, क्योंकि बेचारी लड़की अगर किसी गलत हाथों में लग गई तो क्या होगा। तो उसने उनसे हामी भर ली, अच्छा ठीक है लेकिन वो जरा दूर के घर में वहां पे इसको छोड़ के जाना, मैं अपने साथ नहीं रखूंगा, उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा जनाब वो वहां पे छोड़ गए अपनी बहन को, अब ये जाता था राहिब रोजाना वहां पे खाना बाहर रख के आ जाता था और वो लड़की अंदर से निकलती खाना ले जाती थी, इस तरह अरसा गुजरता रहा। शैतान उसके पास आया, उसने कहा देखो तुम बाहर रख जाते हो, आखिर वो एक इंसान है, किसी से तो बात करनी है उसने, किसी के साथ तो बैठेगी, जो उसके भाई भी यहाँ पे नहीं है, तो चार बोल उसके साथ बोलो, तो कोई हर्ज थोड़ी है इसमें। अब वो जब जाने लगा तो अब जाके उसे अलैक सलैक भी करने लगा, उसका हाल चाल भी पूछने लगा, कुछ अरसा ऐसे चलता रहा। फिर शैतान ने उससे कहा देखो तुम बाहर से आ जाते हो, अगर अंदर कुछ देर उसके दिल बहलाने के लिए बैठ जाओगे तो क्या हर्ज है, ये भी तो एक नेकी ही है, किसी के पास बैठना, किसी की दिलजोई करना। उसने कहा हाँ वाकई बात तो सही है, इसी तरह करना चाहिए। अब ये जो वसवास आते हैं ना, खुतुआत क्या होते हैं, वसवसे, शैतान के वसवसों की इत्तेबा नहीं करनी। अब वो वसवसा डालता है इंसान को, लगता है कि ये मेरा दिमाग खुद ही सोच रहा है, लेकिन ये जो बार बार आती है ना कोई चीज, वो शैतानी वसवसा होता है। अब वो जाके अंदर भी बैठने लगा, जब अंदर बैठने लगा तो वो कुछ अरसा उसे बातचीत होती रही, उससे कुर्बत हो गई। और फिर कुर्बत होते होते ये तो जहां पे एक मर्द और एक औरत अकेले हो तो हदीस में है कि तीसरा शैतान होता, और उसके बाद वो काम हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और वो लड़की हामिला हो गई। अब तो उसको बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई कि ये हो क्या गया, अब तो इसके भाई आएंगे तो मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। और उसने क्या किया, वो जो उसके बच्चा पैदा हुआ उसने उस लड़की को भी कत्ल कर दिया, उसके बच्चे को भी, और उनको दफना दिया। जब वो भाई आए तो उनको बता दिया कि उसका तो कुछ वो हो गया था, वो तो मर गई है बेचारी। इसका रोते धोते चले गए, शैतान उनकी ख्वाब में आया और उनसे कहा कि वो तो ऐसा ऐसा काम इसने किया, और वहां पे तुम जाओ, वहां पे वो लड़की और उसका बच्चा दफन है। तो वो गए, उन्होंने वो जमीन खोदी तो वहां पे ऐसा ही था। वो तो बादशाह के पास शिकायत लेके चले गए, बादशाह के आदमी उन्हें आके उसको पकड़ने के लिए आ गए कि ये तो बहुत बड़ा जुर्म इसने कर दिया। जब वो उसको पकड़ के लेकर जा रहे थे तो शैतान आ गया, अब एक आदमी की शक्ल में आया और उसको कहा, देखो मैंने ही तुम्हें आज तक यहां तक पहुंचाया है, अब मैं ही तुम्हें सिर्फ इससे निकाल सकता हूं। उसने कहा, मेरी तो बड़ी बदनामी हो गई, मेरा तो क्या मेरा बनेगा, खुदा के लिए मुझे निकालो इसमें से। उसने कहा, उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, फिर निकल सकते हो तुम। ने कहा, बताओ जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। उसने कहा, मुझे सजदा कर दो तब मैं तुम्हें इससे निकालूंगा। उसने उसको सजदा कर दिया, और उसके बाद उसको उन्होंने कत्ल कर दिया कदर के जुर्म में। तो उसका क्या अमल रह गया, उसने कत्ल भी किया, जिना भी किया और शिर्क भी कर दिया। तो शैतान कैसे, ये हदीस में है ये सारी बात, ये किस्सा, तो शैतान कैसे इंसान को वरगलाता है, कैसे वो एक एक स्टेप आगे लेकर जाता है। एक दिन में नहीं कुछ करा देता कि तुमने ये करना है, अब उसको एक दिन में कह दिया जाता है मुझे सजदा करो, करता वो कोई? उसको वो कहता कत्ल करो, करना था उसने कोई? जिना करो, करना था कोई? नहीं। मगर देखिए आप, ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज कराता है ना, तो इंसान झांसे में आ जाता है। कोई बात नहीं, इतना सही तो काम, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, इतनी सी तो चीज है। और हमने भी कर लिया तो क्या, मैं उतना तो नहीं ना कर रही जैसे लोग करते हैं। ये शैतानी फंदे हैं, और इससे कैसे बचा जाता है, इंसान जैसे उस बंदे ने अपने आप को तसल्लियां दी ना, अपने आप से इंसान झूठ ना बोले, अपनी नियत को साफ करे। ये नियतों के अंदर जो खोट होता है ना, बड़ा छुपा हुआ होता है, ये पता नहीं चलता। इंसान कहता है कि मैं नमाज पढ़ाऊंगा, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, ये नहीं है कि मुझे कोई इमामत कराने का वो है, बस लोग मेरी तिलावत तो सुने ना, कि मेरी तिलावत कितनी खूबसूरत है, मेरी आवाज तो पता चले लोगों को। और ये फिक्स ऐसे ही होगा कि इंसान कॉन्स्टेंटली अपने एक्शंस को वॉच करे, कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर सबसे सख्त पैरा बिठाए, बजाय लोगों को देखने के ना, लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को देखेंगे मैं क्या कर रही हूं। हमारी सारी एनर्जी, सारा वक्त हमारा किस में गुजरता है, लोगों की एक्टिविटीज क्या है, जरा मैं जानू तो सही। अगर इतनी सख्ती अपने साथ हम करें ना, तो बहुत हमारे अंदर बेहतरी आ जाए, ये हमें अपनी परवाह भी नहीं होती, सारी दुनिया की फिक्र हमें पड़ेगी है, कौन क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, किधर जा रहा है, किधर सैरें कर रहा है, किधर घूम रहा है। ये शैतान का फंदा है, इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप, कदमों की इत्तेबा ये है, इसके एक स्टेप पे कदम रखोगे फिर दूसरा स्टेप, फिर दूसरे पे कदम रखोगे फिर तीसरा स्टेप आएगा, समझ आए। ये भी एक बात है, शैतान की चालों को समझना जरूरी है। ये तो हमारा बेड़ा गर्क करने पे तैयार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, ये तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, यानी इसकी दुश्मनी छुपी भी नहीं है, खुली दुश्मनी, खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करता। उसने तो उस दिन कह दिया था जब अल्लाह ने उसको वहां से निकालने के लिए इसको तो मरदूद करार दे दिया था, तो इसने उस दिन ही कहा था कि मैंने नहीं छोड़ना आदम की औलाद को, मैं तो इनके दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, मैं नहीं इनको छोड़ूंगा। तो जब उसने कसम खा के अल्लाह ताला को ये बात कह दी हुई है, तो अब क्या बात रह जाती है। और अल्लाह ताला ने कुराने पाक में फरमाया है इस बात को कि देखो वो तुम्हारा दुश्मन है, सूरह फातिर में, इन्ना शैताना लकुम अदू फत्तखिज़ूहु अदुवा, तुम भी तो उसको दुश्मन समझो, क्योंकि हमें पता हो ना हमारा कोई दुश्मन है,
हम उसे कितनी एहतियात करते हैं। किसी को पता हो कि उसकी कोई दुश्मनी कहीं शुरू हो गई है तो इतनी एहतियात कि क्या पता कहाँ से किस वक्त आ जाए, पीछे से हमला कर दे, क्या पता हम बाहर निकले तो क्या पता हमारे घर में आ जाए, क्या पता रात को आ जाए। तो कितना इंसान एहतियात करता है, लेकिन शैतान से हमें कोई एहतियात ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। बल्कि कई लोगों के सामने अगर ये बात की जाए ना कि ये शैतान के ने देखो कैसा खेले, तो कहते हैं ना शैतान को ना इल्जाम दो, शैतान को कैसे ना इल्जाम दे, वो तो आपका खुला दुश्मन है, वो तो वो कराएगा चीजें, वसवास डालेगा। और ये जो वसवास बार बार पलट पलट के आते हैं ना कि इंसान झटकता भी है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, नहीं नहीं उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हें भी बस इस तरह करना चाहिए, ये शैतानी होते हैं। और मैं तो ये सिर्फ कहूंगी कि शैतान के वसवास से ना सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ये जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तोहफा दिया है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। यकीन जाने मैं तो अपने आप से अपने आप का कहती हूँ कि इंसान मैं तो खुद नहीं बच सकते, हमारे लिए नहीं इम्पॉसिबल है कि हम बचे, वो तो छोड़ता ही नहीं है, वसवसे डालता है, कभी इधर से आता है कभी उधर से आता है, वाकई ऐसा है। तो सिर्फ अल्लाह की पनाह में आना इसका सलूशन है, और कोई इसका हल नहीं है, अल्लाह ताला ही हमें बचा सकता है। आखिर उस दुश्मन का आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं जिसको आप देख ही नहीं सकते। तो इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, इसी वजह से हिफाजत की दुआएं जरूरी हैं इस दुश्मन से बचने के लिए। हम इनको चाहे कुछ ना समझे, सूरह नास को कुछ ना समझे, लेकिन ये है जिसके अंदर हमारे लिए हिफाजत है, इसीलिए इसको सुबह शाम पढ़ना चाहिए माउजात को। इखलास, नास, फलक, ये तीन सूरतें तीन तीन दफा पढ़नी चाहिए, और आयतल कुर्सी, ताकि इस शैतान मरदूद से हमारी जान बची रहे। इन्नमा यामुरुकुम, फिर अल्लाह ताला ने इसकी जो चाल है वो बताई, बेशक, यानी बेशक से मैंने आपको बताया ना ये कलमा हसर है, कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका काम ही यही है, क्या सिर्फ और सिर्फ यही करता है, क्या या अमुरुकुम, कि वो हुक्म देता है तुमको किस चीज का, बिसूई वल फहशाई, बुराई का, और बुराई और बेहयाई, और बेहयाई भी तो बुराई ही है, फिर बेहयाई को अलग से क्यों कहा गया, इसलिए कि शैतान बुराइयों में भी इस बुराई के हुक्म देता है कि इंसान कोई बेहयाई का काम करे, बेहयाइयां उसको पसंद है। इस आप देख लेना कि जब हमारे माँ बाप आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया है, तो उसने उस वक्त क्या किया था, उनके कपड़े ही तो उतरवाए थे, वो काम कराए जिससे उनके कपड़े उतर जाए, तो सबसे ज्यादा उसको शौक ना बेहयाई का, फहाशी का। और आज तो जितनी फहाशी है, सहाबा कराम को भी इतना बड़ा टेस्ट फहाशी का नहीं हुआ होगा जितनी आज फहाशी का टेस्ट है, इतनी बड़ी आजमाइश है, इंसान जिधर को मुंह करे उधर फहाशी है। आप इंटरनेट खोल लो, आप अपना फोन खोल लें, आप अपनी टीवी खोल लें, आप बाहर जाएं, सड़कों पे घूमें, वहां पे बिलबोर्ड्स देखें, आप मॉल में चले जाएं, आप कहीं जाएं, अपने कंट्रीज में चले जाएं, या यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में तो इंतहा ही है, हर तरफ फहाशी है। सहाबा के दौर में ऐसी नहीं थी, उनके ऊपर डिफरेंट तरह की आजमाइशें आई थी। आज की आजमाइश ये है कि हमारे सामने बेहयाइयों के पोस्टर, बेहयाइयों की तस्वीरें, बेहयाइयों की मौसीकी, शायरी, बेहयाइयों की बातें इतनी खुलेआम है कि इंसान जिधर को मुंह करता है उधर बेहयाई है। और शैतान का ये काम होता है कि वो, याद रखिए, हलाल ना सब कुछ हलाल है, आप देखिए जमीन माफिल अर्ध जित जो कुछ जमीन है, हराम कम चीजें आप आगे देख लेंगे हराम की भी लिस्ट, लेकिन जाके पढ़वाएगा हराम में, उसका ये है। अभी कितनी हलाल के दरवाजे हैं आदमी के लिए, मसलन चार निकाह वो कर सकता है, और इसके अलावा खाने पीने में आप देखें कितनी हलाल है, मगर वो ले दे के ना शराब को की तरफ ही उसको लेकर जाएगा, ले दे के जिना की तरफ लेकर जाएगा, देखिए हराम करवाता है। और दूसरा, ऐसे नहीं होता कि एक दिन में कोई हराम करा लेगा, सबसे पहले वो चीज जो होती है उसकी जो मतलब बुराई होती है ना उसको हल्का कर देता है, इंसान को वो चीज बुरी ना लगे। अब जाहिर है जब नेकी की आहिस्ता आहिस्ता कराहत खत्म हो जाएगी, नेकी आम हो जाती है तब भी उसकी कराहत खत्म हो जाती है कि हर तरफ इंसान वही बुराई, सॉरी बुराई की बुराई को देखता है, तो उसकी कराहत दिल से निकाल देता है कि इसमें क्या, ये तो कोई गलत चीज नहीं है, फिर क्या हो गया ये तो ऐसे। आज देखिए आप कौमे लूत का जो अमल है, इसको कितने ही मुसलमान है जो कहना शुरू हो गए कि नहीं तो इनके साथ तो हमदर्दी करनी चाहिए, आखिर ये तो एक नेचुरल, वो इस तरह ही पैदा हुए यार ऐसे। अगर वो ऐसे पैदा हुए होते और ऐसा ही अल्लाह ने उनको बनाया होता तो फिर तो ऐसे ही है जैसे कोई हैंडीकैप्ट हो गया। तो फिर अल्लाह ताला जिस चीज का इंसान मुकल्लफ ना हो अल्लाह उसके ऊपर नहीं पकड़ करता, यानी जिस चीज को अल्लाह ने वैसा ही बनाया अल्लाह उसके ऊपर थोड़ी उसकी पकड़ करता, पकड़ इंसान के अपने अमल के ऊपर होती है। तो आज कितने ही लोग हैं जिनके अंदर से ये बुराई की कराहत ही खत्म हो गई, कौन सा हरज है इसमें, क्या हो गया। तो जब पहले बुराई की कराहत जाती है दिल से, फिर बुराई करना आसान हो जाता है। जब बुराई को इंसान समझता है कि इसमें क्या हरज है, सबसे पहले ये कलिमात आते हैं, इसमें हरज ही क्या है, इससे क्या होगा, क्यों कुछ नहीं फर्क पड़ता इसे, ये पहले आता है। पहले इंसान हम कौन सा कर रहे हैं, कर नहीं रहे, लेकिन इसमें हर्ज भी नहीं है जो कर रहे हैं। तो बस समझ लें कि आपने अपने लिए दरवाजा खोल दिया है। जब इंसान कहता है ना नहीं हम कर तो नहीं रहे, कई लोग कह रहे हैं हम खुद तो नहीं है ये वाला अमल हम खुद तो नहीं करते और ना हम इनमें से हैं, लेकिन जो कर रहे हैं तो आप उनके पीछे क्यों पड़े हो। यही तो चीज है कि शैतान बुराई की कराहत निकाल देता है। कम अज कम बुराई को बुराई तो समझा करें। आप कहते हैं हमसे कुछ नहीं होता, हमारे करने से क्या होगा, हम किसी चीज को चेंज थोड़ी कर सकते हैं। भाई आपको कोई चेंज करने को नहीं कह रहा अगर आपके बस में नहीं है, लेकिन कम अज कम बुराई को कहो तो सही है, बुरी है चीज। आज बुराई की कराहत ही खत्म हो गई। फिर जब बुराई की कराहत खत्म हो जाती है तो अब वो एक्सेप्टेबल हो जाती है। जब वो एक्सेप्टेबल हो जाती है तो एक्सेप्टेबल चीज को करना में क्या मुश्किल है, फिर तो करेंगे, तो कोई थोड़ी कोई एतराज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो पहला काम वो ये करता है, बुराई को हल्का दिखाता है, कोई बात नहीं है इसमें, जो उसकी बुराई बुराई नहीं लगती, फिर इंसान कर भी लेता है। आप देख लें कई चीजें इंसान शुरू के अंदर उनको सोचता है हाय ये क्या, लेकिन पहली पहली दफा जब देखते हैं हाय अरे ऐसा हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे अब तो खैर नहीं, ये भी नहीं मिसाल दे सकते क्योंकि हमारे अपने मुल्कों में ही ये सब चीजें वैसे ही देखी जाती हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं कि वो यहाँ आके देखेंगे। तो लेकिन अगर मसलन किसी जगह पे कोई रहता है उसने कभी ऐसी चीज ना देखी हो, तो वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते ही क्या सोचेगा, ये क्या लिबास है उसके, तो मतलब एकदम उसके लिए शौक होगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो एक रोज की चीज बन जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि इसमें क्या बुराई है, अच्छा ठीक है अगर पहनते हैं तो हक है इनका, पहन सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, खुद भी पहनने लगेंगे। तो ये चीजें इस तरह से आगे बढ़ती हैं, ये देखिए फुट स्टेप्स है ना, कभी एक दिन में नहीं होता। फहाशी भी बेहयाई भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आंख भी जिना करती है, कान भी जिना करते हैं, जुबान भी करती है, फिर शर्मगाह तो उसकी तस्दीक करती है। एंड किस पे जाके होता है, शर्मगाह पे, उससे पहले ये सारे चैनल्स हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तकरबु जिना, जिना के करीब भी ना जाओ। क्यों, इसलिए कि जब आप देखिए ना कोई चीज अगर बुरी है उसके रास्ते पर चल पड़े, जो रास्ता है उसको ही बंद कर दिया गया, उसके करीब भी ना जाना, क्योंकि अगर करीब जाओगे तो उसमें पड़ जाओगे, करीब भी नहीं जाना, कई चीजों का इस तरह से कह दिया। तो वो चीजें जो जो आंखों से देखी जाती हैं, जो बोली जाती हैं, जो कानों से सुनी जाती हैं, उन बेहयाइयों से इंसान बचता रहेगा तो फिर वो उसकी इज्जत भी सलामत रहेगी, अदरवाइज किसी दिन जाके जिना भी कर दे। तो फहाशी बेहयाई इसका हुक्म शैतान देता है, और कैसे हुक्म देता है, वो आके आपको ये नहीं कहेगा मैं तुम्हें आज ऑर्डर दे रहा हूं कि तुम ये करो, वसवसे डालेगा वसवसे डालेगा, कुछ नहीं होता। एक दफा करने से क्या हो जाएगा, एक दफा करने से क्या फर्क पड़ता है, बाद में तौबा कर लेना। कितने बहाने, सभी तो करते हैं। अगर दिल जमीर कहीं छुपा हुआ कहीं मुलामत कर भी दे तो क्या होता है। आज आप देख लें, हमारी शादियां देख लें, फहाशी अगर आपने देखनी है तो सबसे ज्यादा आपको वहां पे नजर आ जाएगी। ये आम लोगों की बात हो रही है, वो इनमें दीनदार भी शामिल है। आपको पता चल जाएगा कि बेहयाई क्या होती है, और वो हमारे लिए कुछ नहीं है। उसके बाद फिर हम भी करते हैं, वो तो उसने भी तो की थी ना, तो फिर क्या हो गया, मैं भी कर लेती हूँ। शैतान देखो कैसे पट्टी पढ़ाता है। तो उसने की थी तो तुम्हें करने में क्या मसला है, तुम भी कर लो। आज एक ही जगह पर, एक ही होटल में, एक हॉल में हिंदू की शादी हो रही हो और एक हॉल में मुसलमान की शादी हो रही है। मैं आपको पूछती हूँ, आप खुद मुझे बताएं, कोई फर्क पता चलता है दोनों में? कोई फर्क पता चलता है? वो ही सेम लिबास, वो ही कानों को फाड़ देने वाला म्यूजिक, वो ही सब तौर तरीके, कोई फर्क नहीं। आज हम कहाँ खड़े हो गए? आज हमारे लिबास देखें, आज हमारी गुफ्तगू देखें, हमारी बातें देखें, उनमें भी बेहयाई। गालम गलोच जो है ना, ये भी बेहयाई है, गालियां देना। आज हमारी जो हम चीजें वॉच करते हैं वो देखें, सब चीजों में फहाशी है। और अपने आप को बचा बचा के चलना, यही है शैतान के रास्ते से खुद को हटा लेना। वरना शैतान के रास्ते पे चलेंगे तो किधर पहुंचेंगे, जिधर वो पहुंचा। तो ये तो नहीं है कि आप शैतान के रास्ते पे चल के जन्नत में पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला ने साफ बता दिया, वो बेहयाई का हुक्म देता है, फिर भी हम कहते हैं तो क्या हो गया, सारे ही करते हैं। अगर सारे ही शैतान के रास्ते पे चल पड़ेंगे तो हम भी चल पड़ेंगे। ये शीप मेंटेलिटी ना अब हमें छोड़ देनी चाहिए। शीप मेंटेलिटी, शीप की क्या मेंटेलिटी होती है पता है? एक भेड़ जो होती है वो अगर पहाड़ से कूद जाएगी ना, तो जितनी भेड़े हैं वो ये नहीं देखेंगे कि वो नीचे जाके गिरी पड़ी है तो मर गई है। वो क्या कहते हैं, वो गई है तो हमने भी जाना। वो भी जाके गिरती जाती है, गिरती जाती है, अपनी नहीं अकल इस्तेमाल करती, गिरती जाएंगी सारी चाहे मरी पड़ी। उसको तो कहेंगे कितनी बेवकूफ है। आप ऐसा सीन देखें तो क्या कहेंगे, ये कितनी पागल है ये। लेकिन हम सब भी उतने ही पागल हैं, क्योंकि हम सब भी यही करते हैं। जब हमने कोई काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, वो भी तो करता है। वो अगर जहन्नुम में गिर रहा है तो हम भी गिरेंगे। वो फलानी ने भी तो किया तो क्या हो गया। तो ये फहाशी शैतान इस तरह फैलाता है। आज हम उन तरीकों की पैरवी करते हैं जो कि गैर मुस्लिमों के हैं, जो कि उनके, उन्होंने तो शैतान के रास्तों को पकड़ लिया और उनके ऊपर चल रहे हैं। हमें अल्लाह ताला ने बता दिया, फिर भी हम उन्हीं तरीकों पे चल रहे हैं। रिलेशनशिप्स में देख लें, आप अपने ड्रामे फिल्में देख लें, ये कोई देखने के काबिल रह गई ये चीजें, सिवाय फहाशी के उनके अंदर और कुछ नहीं। एक ही टॉपिक है उनके पास, ऐसे नहीं लगता कि शैतान एक एजेंडा लेके खड़ा हो गया और बस वो कहता है कि बस इनके अंदर फहाशी फैलाओ। हर एड में एक खूबसूरत औरत दिखाई जाती है, वो चाहे वो एड किसी ब्लेड का है, चाहे वो सिगरेट का है, चाहे वो किसी गाड़ी का है, उसमें औरत जरूर होगी। क्या है, आप बड़े बड़े पोस्टर्स देख लें जो लगे होते हैं, हर एक में औरत दिखाएंगे। तो फहाशी का आज यानी एक बाजार है जो ऐसा सरगरम है, और शैतान इसके जरिए आ रहा है, जो इंसानों के अखलाक भी बिगाड़ रहा है, उनका दीन ईमान भी जाता रहा है, ये फहाशी की वजह से। नजरों की हिफाजत नहीं रही, इसका हुक्म कुरान में है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि जब नजरें उठेंगी तो फिर बुराई के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। नजर ही नहीं उठानी, लेकिन आज नजर बचाना मुश्किल हो गया। وَأَن تَقُولُوا اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, और وہ क्या हुक्म देता है कि तुम अल्लाह के ऊपर वो बातें करो जो तुम नहीं जानते। और आम ये होता है इवन मुसलमानों में, गैर मुस्लिम तो करते ही हैं, उनको ना अल्लाह का पता, ना कुछ, ना कुछ दीन का पता, उसके ऊपर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कोई उनको इल्म भी नहीं है। और मुसलमानों का क्या हाल, कितने आराम से आज लोग कह देते हैं ये तो कुरान में लिखा हुआ है, या कितने आराम से कह देते हैं कहाँ लिखा है जी कुरान में ये? हालांकि वो कुरान में लिखा होता है, लेकिन उन्होंने आज तक कुरान पढ़ा ही नहीं, तो उनको क्या पता। और अब कितने धड़ल्ले से कहते, कहाँ लिखा है ये कुरान में जी? तो आपने कुरान को समझा है? कितना समझा है आपने? इंसान ये सवाल पूछे अगला, कितना समझा है, कितना आपने इसमें दिमाग खपाया हुआ है जो आपको पता है? फिर कुरान के जिनको समझ है वो उनकी आयतों को ट्विस्ट करके अपने मनमाने माने लगा के, और फिर कहते हैं देखा, ये देखो ये तो कुरान में इस तरह है। मा ला तालमून, जो नहीं जानते, पता ही नहीं है, वो अल्लाह के ऊपर बातें बनाते हैं। और कई ऐसे, अल्लाह ताला माफ करे, हदीस जो है वो आज ट्रू हो गई है कि कई ऐसे उलमा होंगे, एक जमाना आएगा ऐसे उलमा होंगे जो जहन्नुम के दरवाजों पे खड़े होंगे और लोगों को जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे। आज हमारे सामने ऐसे लोग हैं जो लोगों को इसी तरह करते हैं, मिंबरों पे बैठे हैं और वो ऐसी ऐसी तकरीरें कर रहे हैं, और लोगों का हाल ये है कि जोश के मारे लगता है कि फट पड़ेंगे ये लोग उनकी वाह वाह करने में, और कुछ नहीं देख रहे कि ये जो बात कह रहा है ये कितनी गलत है। बस उनका काम ये है कि इतनी जोर से नारे लगाएं कि दीवारें हिल जाएं, अपना जोश दिखाएंगे और हाथ उठा उठा के उनको शाबाश देंगे, और वो क्या बातें कर रहे हैं? अल्लाह ही माला तालम, जो नहीं तुम जानते। ये शैतान ही करवाता है, कभी किसी बुजुर्ग को बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए ऐसी बातें करते हैं, कभी किसी किस्म की बातें करते हैं। इसीलिए आपको कहते हैं खुद नॉलेज लो, ताकि आपको कम से कम कोई बात करे तो आपको समझ तो हो कि ये जो बात कर रहा है ये गलत कर रहा है, ये हमें बहका रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं अल्लाह ने कही। लेकिन हम अंधाधुंध फिर चल पड़ते। कभी हम, अगर आपको बात सही पता है तो जरूर बताएं, लेकिन अगर आपको किसी बात में जरा भी डाउट है ना कि पता नहीं ये इस तरह से है या नहीं, तो अपनी जुबान कभी ना खोलें, क्योंकि यही शैतान करवाता है। अंतकूल वल्लाही मा ला तालमून, तुम नहीं जानते और तुम अल्लाह के ऊपर वो बातें बनाने लगे। हदीस में तो ये आता है, फलानी जगह तो ये है, हमारे दीन में तो ऐसा है। हमारे दीन में कहाँ ऐसा है? आपको खुद ही सही नॉलेज अगर नहीं है तो आप बैठ के किसी जगह तकरीर शुरू कर देते। तो सिर्फ और सिर्फ वो बात करें जिसका आपको 100% श्योर है कि हाँ ऐसा है, अदरवाइज मत अपनी जुबान खोलें, क्योंकि अदरवाइज आप इस आयत के मुताबिक हो जाएंगे कि आप अल्लाह पे वो बातें लगा रहे हैं जो कि आप नहीं जानते, और ये काम कौन करवा रहा है? शैतान। और आज देखें कितनी कितनी बातें, वो कुफारे मक्का तो क्या कहते थे, वो कहते थे ये जो हम नंगियों के तवाफ करते हैं ना काबा का और तालियां बजाते हैं, ये तो अल्लाह ने ही हमें हुक्म दिया है। वो अल्लाह फहाशी का कोई हुक्म देता? आगे भी आएगा, आप अगली सूरा में भी पढ़ेंगे यही कि शैतान किस चीज का हुक्म देता है, इसी सूरा में बल्कि अगले पारे में, कि शैतान फहाशी का हुक्म देता है, अल्लाह नहीं फहाशी का हुक्म देता। ये अल्लाह तआला का नहीं है कि वो बेहयाई की बातें लोगों को कहे करने को, या ऐसी ऐसी बातें कि जो खुद ही से अपनी मनगढ़ंत बातें खुद ही से लगा ली हुई। वो शैतान, याद रखिए, ये तीन काम कराता है, बुराई के, बुराई की कराहत को निकाल के बुराई के काम कराता है, और बुराई में सबसे बड़ी बुराई फहशा, फहाशी। ओके, देखें जब बेहयाई शुरू होती है ना तो इससे भी बहुत सारे और दरवाजे खुल जाते हैं बुराई के, और फहाशी आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान पाक में कि जाहिर की भी और बातिन की भी हर तरह की फहाशी को अल्लाह ने हराम करार दे दिया, हराम, और क्या लफ्ज देखना चाहते हैं, हर तरह की। लेकिन प्रॉब्लम आज क्या है ना कि अगर आप किसी को कहें कि ये बेहयाई है, ये नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कहते हैं ये किसने आपको कह दिया बेहयाई? आज हमारे मयार ही देखो शैतान ने कैसा हमें बना दिया है कि बुराई बुराई ही नहीं लगती, कहते हैं इसमें क्या हर्ज है, और बुराई भलाई लगने लगी है कि इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं, ये तो जरूरी है, इससे तो सारा फन है, इसमें तो सारा मजा। तो समझ नहीं आती कि कौन ये पीछे है जो ये करा रहा है। आज हमारी बुराई के मयार ही बदल गए, किसी गैर महरम के साथ करीब होना, उसके उसके साथ बातचीत करना, क्या ये फहाशी नहीं है? नहीं, ये तो हमारे भाई हैं। ओ भाई, भाई करते करते फिर आगे कुछ और मसले हो जाते हैं। हस्बैंड के दोस्त उनके दोस्त हैं, वो आपके दोस्त नहीं है। किसी के साथ भी एक्स्ट्रा बातचीत करने की हमें जरूरत ही नहीं। जहां पे जरूरी नहीं है तो हमें क्या जरूरत। हम आगे बढ़े और हम उनके दोस्तों के साथ हम भी दोस्ती करें। जब फहाशी के आपने दरवाजे बंद करने हैं ना, तो ये सारी चीजें फिर ही पर्दा भी आता है, फिर भी सेग्रीगेशन भी आती है कि आप अलग अलग बैठे। जब एक जगह बैठेंगे तो सब एक दूसरे से बात करेंगे, फिर फ्रेंकनेस होगी, फिर क्लोजनेस होगी। और एक वाकया नहीं है ये, बहुत सारे वाकयात हैं जहां पे इस किस्म की होती हैं चीजें। हमारी एक सिस्टर ने ये शेयर किया और उन्होंने मुझे कहा था कि आप जरूर ये बात शेयर करिएगा, इसलिए मैं उनकी इजाजत से ये शेयर कर रही हूं कि एक किसी की ये बात उन्हीं की है। उन्होंने बताया कि किसी एक स्कॉलर के साथ उनकी बातचीत होने लगी फोन पे या जैसे भी, या उनके पास जाती थी, और कहती बढ़ते बढ़ते फिर टेक्स्ट होने लगे, फिर फोन पे बातें होने लगी। और इनके हस्बैंड चूंकि घर पे नहीं होते थे, वो किसी और मुल्क में रहते थे और ये यहाँ पे बच्चों के साथ अकेली थी, तो बढ़ते बढ़ते ये हाल हो गया कि यानी आपस के अंदर मोहब्बत और वो, और फिर वादे वईद और शादी के वादे और ये सब हो गए। और फिर एक दिन उनके हस्बैंड ने उनके टेक्स्ट पकड़ लिए और उनकी ये आज नौबत आ गई है कि वो बच्चों से भी जुदा हैं, आपस में भी उनका खत्म हो गया रिलेशनशिप, उनकी जिंदगी खत्म हो गई। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों को बताएं कि वो इस चीज को, कि नहीं, ये तो स्कॉलर है, नहीं, ये तो स्कॉलर है, करते करते तो स्कॉलर है, तो वो क्या इंसान नहीं है। जहां पे एक मर्द औरत की इस तरह से प्राइवेट मुलाकातें या प्राइवेट बातें शुरू हो जाएं, वहां पे कोई तीसरा शैतान ही आएगा ना। आज उनका घर ही तबाह हो गया, तलाक हो गई, बच्चे भी उन्होंने ले लिए, आज क्या उनका रह गया। मैं यहाँ ये आपको इसलिए रियल लाइफ से मिसालें लाके बता रही हूँ कि आप एक फूल्स वर्ल्ड में ना रहें। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जिस रब ने हमें हुक्म दिया ना, तो वो ज्यादा जानता है, हम नहीं जानते। इन सब चीजों के पीछे हमारी ही भलाई है। अगर हमें पर्दे का हुक्म दिया तो उसमें भी हमारी को भलाई है तो दिया है ना। अल्लाह, कोई शौक नहीं है कि हमें पर्दों में करके कुछ उसको कोई फायदा होगा, लेकिन इसमें हमारे लिए फायदा है। जब गैर महरम की नजर उठेगी तो कितने उससे फितने पैदा होते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपके ऊपर उठ रही है और आपकी वजह से उसके घर में फितने पैदा हो रहे हैं, तो इसका कसूरवार कौन है ये बताएं। चाहे आप अबाई इतने टाइट पहन के घर से निकल रही हैं, आप फुल मेकअप करके एक हिजाब लेके जा रही हैं कि उसमें तो हिजाब के अंदर, और आपने अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना लिया कि शायद आप हिजाब ना लेती तो इतनी अट्रैक्टिव ना लगती जितना कि आपने अब अपने आप को बना लिया, तो कसूरवार कौन है। किसी ने मेरे साथ ये भी शेयर किया था, उन्होंने कहा उसके हस्बैंड उसके ऊपर हाथ उठाते हैं, कह रही सिर्फ इस वजह से कि वो कहते हैं कि तुम वैसी खूबसूरत क्यों नहीं जैसे तुम्हारी वो दोस्त है, तुम तो ऐसी लगती हो, तुम तो ऐसी। जाहिर है उसकी नजरें उस पर उठी तो फिर है ना, और वहां से क्या लेकर आई फिर फितना। किसी के काम नहीं है कि जब किसी किसी का महरम मौजूद ना हो तो वो उसके घर में आए। किसी का काम नहीं है कि किसी औरत को फोन करे जबकि उसका हस्बैंड घर पे नहीं होता। ये औरत को अल्लाह ने उसके अंदर एक अलार्म सिस्टम रखा है कि जो बजने लगता है अगर कोई अपनी हद से आगे बढ़े। लेकिन फिर औरतों को समझना चाहिए कि यहाँ पे हमारी हद है, हमने इससे आगे नहीं जाना और किसी को इस हद को क्रॉस नहीं करने देना। और कहीं पे कजन 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 है, कजन है, कजन तो कुछ भी नहीं होता, कोई मसला ही नहीं कजन के साथ, उसके बाद फिर वहां पे भी फितने पैदा होते। तो कहां कहां से मैं आपको मिसालें ला के दूं। आप इस माशरे में रहते हैं, आप लोग खुद देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द कितने फरिश्ते हैं यहाँ पे जो रहते हैं, खुद आप बताएं। फिर उसके बावजूद हम अपनी आंखें बंद किए रखें, तो हमारा किसी और पे ना कंट्रोल हो, अपने आप पे तो है ना। फिर अपने आप को ऐसी जगहों से बचाएं, ऐसी मजलिसों से बचाएं। वइदा क़ीला लहुम तबीउ मा अंज़लल्लाह, जब कहा जाता है इनसे कि पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो आगे से उनका जवाब पता क्या होता है। भाई आओ, कुरान जो कहता है उस तरफ आओ, हदीस जो कहती है उस तरफ आओ, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, ये काम नहीं करना। ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया, तुम क्यों करते हो? तो क्या कहते हैं आगे से, कालू बल नत्तबे उमाल फैना अलैहि आबान, हम तो वही करेंगे जिसके ऊपर हमने अपने बाप दादा को पाया। देखे ना, मुशरिकीन मक्का के साथ तो ये था ही मामला, वो कहते थे हमने तो इसी मजहब के पर हमारे बाप दादा थे, आप हमें और कुछ सिखाने आ गए, हमने तो नहीं छोड़ना जिस पे हमारे बाप दादा थे उससे हम हट जाए। अबू तालिब ने लास्ट मोमेंट तक क्यों नहीं इस्लाम लाए थे? उन्होंने कहते थे लोग औरतें कहेंगी कि देखो मरते वक्त डर गया था, उसने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी पैर की बेड़ी होती है, एक बहुत बड़ा इंसान को जो चीज रोकती है ना वो ये कि हमारे बाप दादा इस चीज के ऊपर, ये सदियों से यही चला आ रहा है। और आज भी आप किसी से कह के देखें, किसी से कह के देखें आप जरा आप इस तरह शादी करें, या आप ये क्यों कर रहे हैं ये 40वीं और ये बरसियां और ये क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं लोग हमारे तो हमेशा से होता रहा, हमारे तो घरों में ये होता है, हमारे तो सारे करते हैं, हमारे तो मम्मी भी ये किया करती थी, कुंडे भी करती थी और वो ये भी करती थी, आप हमें क्या नई बातें बताने आ रहे हैं? अगर उनको कहे ना कुरान और हदीस में ये लिखा है, या ये चीज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, तो फिर उनका जवाब देखिए क्या मिलता है आपको जवाब, अगर पूछ कह के देखिएगा, दे डोंट केयर कुरान में है हदीस में है क्या है क्या नहीं है, बस हमारे तो बड़े ये करते थे। और ये सबसे भोंडा एक्सक्यूज है, सबसे बेकार एक्सक्यूज ये। इसलिए अगर देखें दुनियावी मामला में हम कभी नहीं वो करते कि जो हमारे बाप दादा करते थे। अब हमारे बाप दादा कैसा पहनते थे, वो इतने सिंपल उनकी लाइफ थी, उनके घर कितने सिंपल थे, वैसा तो हमारे कुछ भी नहीं है जो हम कॉपी करते हैं। लेकिन खास तौर पे दीन में जरूर हम कहते हैं कि नहीं, जो हमारे बाप दादा करते थे दीन में हमें उनकी पैरवी याद आ जाती है। अब देखें किसी को कह के देखें कि आप ना ये आप ये करती हैं 11वीं, तो 11वीं ना करें, ये तो देखें ये तो सुन्नत का तरीका ही नहीं। उनको कहेंगे नहीं नहीं मेरी तो अम्मी भी खीर पकाती थी, मेरी दादी भी खीर पकाती थी, मेरी फलाना भी करती थी। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलूना शैअन वला यहतदून, वो उनके पीछे अंधाधुंध चलते ही रहेंगे, चाहे उनके बाप दादा को कोई अकल नहीं थी और वो हिदायत पे ही नहीं थे। और वाकई अगर देखें तो दीन के मामले में जो पिछले हैं, इल्ला माशाल्लाह किसी किसी के खानदान होंगे जो कि दीनी कोई खानदान से होगा, लेकिन ज्यादातर लोग आप देखें कि उनके बाप दादा को कोई दीन का ऐसा नॉलेज नहीं था, कोई वो कुरान नहीं पढ़े हुए थे इस तरह जैसे आज लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नहीं उन्होंने इस तरह से सीखा था, लेकिन कहते नहीं हमने अंधाधुन फॉलो वही करना, चाहे वो गलत कर रहे थे, नहीं वो भी तो ऐसा करते थे, तो क्या हो गया अगर हम भी करेंगे? आपका मतलब है वो सारे गलत थे, आप ये कहना चाहती हैं, आप ये कहना चाहती हैं वो सारे जहन्नुम में चले गए? तो इसी तरह वो मुशरिकीन मक्का करते थे कि फिर वो हमारे बाप दादा क्या जहन्नुम में चले गए जो वो ये बुत परस्तियां करते गए? आज भी पूछते हैं क्या उन्होंने फिर गलत किया? यानी अब आप कहेंगे हाँ वो गलत करते थे, तो फिर वो आपका सर तोड़ेंगे कि आपने हमारे बाप दादा को ये कहने की कैसे जुर्रत करते। और वैसे हम कहते रहेंगे कि अम्मी आपको क्या पता, वो तो उनको क्या पता, आप तो पुराने लोग हैं हमें जो ज्यादा पता है, लेकिन दीन के मामले में नहीं हम वो छोड़ते चीजें, वो ही हम अंधा धुंध लकीर के फकीर उसके ऊपर ही चलते रहते हैं। और अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया है। अब देख लें हम सब लोग जितने भी हैं, इल्ला माशाल्लाह शायद ही कोई हो जिसके पुश्तों तक से सब मुसलमान आ रहे हैं, ज्यादातर जो लोग सब कॉन्टिनेंट के हैं, इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं, इनके आबाओ अजदाद पीछे से तो हिंदू ही थे ना, गैर मुस्लिम ही थे ना, उसके बाद ही कोई मुसलमान हुआ होगा, पहला कोई आदमी मुसलमान हुआ होगा जिससे आगे फिर इस्लाम चलता रहा। अगर वो पहला आदमी भी कहता कि नहीं जी मैंने तो वही करना है जो मेरे आबाओ अजदाद करते रहे, तो हमारे तक इस्लाम पहुंचता? मैं तो कहती हूँ हम सबको दुआएं करनी चाहिए उस पहले इंसान के लिए जो इस्लाम लाया होगा, पता नहीं कितनी उन्होंने कुर्बानी दी होगी, कितना उनके लिए मुश्किल होगा, तो आज हम कुर्बानी देने से बच गए, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया होगा। उसी वक्त में तो कोई ईमान लाया होगा ना, तो वो जो भी होगा अल्लाह ताला उनके लिए हमें सबको सदका जारिया बनाए। ये देखो कितनी बड़ी बात है, लेकिन आप खुद सोचें कि अगर वो गलत करते रहते तो आज हम तक सही बात कहां से पहुंचती। इसलिए अगर उनकी अगर कोई पता चल भी जाए कि हमारे बाप दादा कुछ गलत कर रहे थे, तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका वबाल बढ़ेगा, उनके ऊपर मुसीबत बढ़ेगी, उसको बल्कि चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वरना क्या होगा, जैसे काबिल ने कत्ल किया तो आगे जितने भी लोग कत्ल करते रहेंगे उसका सारा का किसको जाएगा, वो काबिल के ऊपर, उसका हर कत्ल का एक हिस्सा गुनाह का काबिल पे भी होगा। इस तरह अगर किसी के अबाओजदाद कुछ गलत काम करते रहे हैं तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, वहां पे स्टॉप कर दे, ताकि ये तो गुनाह का सिलसिला तो ना चलता रहे। लेकिन हम इसमें प्राउड होते हैं कि नहीं देखो हम उनकी ट्रेडिशन लेके आगे चल रहे हैं। इस्लाम या दीन ट्रेडिशंस के ऊपर नहीं चलता, इससे हमें पता चलता है अंधाधुंध हमने किसी को फॉलो नहीं करना, अंधे होके ब्लाइंडली, चाहे वो बाप दादा है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई इमाम है, चाहे कोई भी है, प्रूफ पूछो यार। ये कोई प्रूफ नहीं है कि नहीं हमारे बड़े करते थे, ये पूछो ये कहां से हमें इसकी दलील मिलती। अगर कुरान और हदीस से कोई दलील मिलती है तो फिर हम ये करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिंपल एज दैट, अगर आप अपना मयार कुरान और हदीस रख लेंगे तो कोई मसला ही नहीं। और अगर मयार ये है कि बाप दादा करते थे, तो फिर बाप दादा की गलतियां तो चलती रहेंगी आगे। और वाकई बाप दादा में से काम ही है, जो आप अपनी पिछली जनरेशन को देख लें, उनके पास दीन का कितना इल्म था, इल्ला माशाल्लाह, किसी के होंगे भी, लेकिन ज्यादातर के क्या दीन का इल्म है। अगर वो कहेंगे कि तुम लोगों ने हिजाब नहीं ले, अगर वो कहेंगे कि तुम लोग ये क्यों ये सूद और इसकी इतनी में पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और क्या तुमने ये शुरू किया हुआ कि ये हराम है और ये नहीं है, ये क्या तुमने, तो क्या उनके पैरवी शुरू कर देंगे? नहीं, सिर्फ पैरवी उसकी करनी है जो कुरान और हदीस से बात करे, जो खुद हिदायत पे। यहतदून का मतलब क्या है, यानी कि वो खुद हिदायत पा चुका हो, वो खुद दीन को फॉलो कर रहा हो, उसको तो आप फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं मतलब है कि अबाओ इजदाद को बिल्कुल ही आप जीरो कर दें और कहें कि नहीं जी जो वो कहते हैं उसे अलग करना, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि आप देखें पिछले पारे के एंड में हमने देखा था याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को उन्होंने जब बुला के पूछा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने क्या कहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आबा की, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम ने जिस खुदा की पूजा की थी हम भी उसी की इबादत करेंगे। तो वो तो अपने आबा के खुदा की इबादत कर रहे थे ना, तो आबा अगर हिदायत पे हैं तो कोई हर्ज नहीं, फिर तो आप जाहिर अल्लाह की बात को ही फॉलो करें। लेकिन अगर आबा खुद हिदायत से हटे पड़े, आपको आज हिदायत मिल गई है और आपको पता चल गया कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन फिर भी आप उसी को फॉलो किए जाएं, तो भटकेंगे ना फिर। देखिए आबाओ अजदाद का मतलब ये नहीं होता कि वो अकले कुल हैं, उनके पास वो पायटी की इंतहा हो गए क्योंकि वो आबाओ अजदाद बन गए, वो भी इंसान ही है हमारी तरह, उनसे भी गलती हो सकती थी। आज अगर एक कादियानी है तो उसका बच्चा कादियानी है, एक ईसाई है तो उसका बच्चा ईसाई है, एक यहूदी है उसका बच्चा यहूदी, क्योंकि अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करनी, खुद नहीं सोचना कि ये क्या सही कह रहे हैं या नहीं। तो जरूरी है कि इंसान देखे कि मेरे आबाओ अजदाद जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं, फिर मैं उसको फॉलो करूं। मसलुल्लदीना कफरु, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, कुफर की बात किसकी कही जा रही है, जो पिछली आयत में आ रहे हैं, जो ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे हैं आबा की, और जब आबा को हिदायत खुद मिली नहीं थी और ये उनके रास्ते पे ही चल रहे हैं, तो उनकी मिसाल ऐसे काफरों की मिसाल कैसी है, कमसलुल्लजी यनइकु, ये एक ना अल्लाह ताला ने तमसील दी है, यानी एक एक मिसाल के साथ बताया कि इन ये किस तरह से है, जैसे अल्लजी यनइकु जो पुकारता है, बिमा ला यस्माउ, उसको जो नहीं सुनता, इल्ला दुआ व निदा, वो उसको पुकार रहा है जो सिवाय दुआ और निदा के, दुआ कहते हैं दुआ निदा दोनों, पुकार और आवाज, फर्क दोनों में क्या है। कहा जाता है कि दुआ जो है वो बामानी है, और निदा जैसे ओ ओ, जैसे हम ऐसे कहेंगे, अब ओ का कुछ माना नहीं है ना। और ये भी कहा जाता है कि दुआ और निदा में ये फर्क है, दुआ करीब से किसी को बुलाना, और निदा जो है वो दूर से किसी को बुला रहे हैं आप, तो वो उसको निदा कहते हैं। बाहर क्या है? दोनों आवाजें हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है दोनों में, ठीक है। ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप एक चरवाहे को सोचिए, मैं आपको फिर उससे समझाती हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, कि एक चरवाहा है, ठीक है। अब वो बकरियों को बुला रहा है, अब वो अपनी बकरियों को बुला रहा है बुला रहा है, उनको अगर वो बुला के आवाज में क्या कह रहा है, इधर आओ तुम्हें जिबा करूं, इधर आओ मैं तुम्हें हलाल करने वाला हूं। बकरियों को क्या समझ आ रही, कुछ समझ आ रही? उनको कुछ समझ नहीं है, उनको पता है कि ये हमें बुला रहा है, आवाज है एक, लेकिन अंदर उसके कंटेंट क्या है वो नहीं समझ आ रही। या उनको कह रहा है आओ मैं तुम्हें चारा डालूं, आओ चलो घर चलना, क्योंकि इतनी हिकमत की बातें कर ले, या हाँ ओए कर करके उनको करे, दोनों में से कुछ भी कर लेगा ना, बामानी कोई बात कर दे, बड़ी हिकमत वाली बात कर दे, या फिर उनको पुकार रहा है वैसे ही उनको हांक लगा रहा है, उन बकरियों के लिए वो क्या है, सिर्फ एक आवाज है बस, उससे आगे उनको कुछ नहीं समझ। ये हमें हलाल करने लगा है, या हमें ये कुछ चारा डालने लगा है, ये हमें कोई घर ले जाने लगा है, या कहीं से फेंकने लगा है, या हमारे साथ क्या करेगा, कुछ नहीं समझ में। इसी तरह इन लोगों की मिसाल है, यानी आप उनके सामने इतना बताओ, कुरान समझा रहे हो, हदीस बता रहे हो, कुछ कर, उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगती, वो उनको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या क्या रहा है, ये हमारे लिए कितनी फलाकी बात कर रहा है, या कि उनके लिए बस आवाज ही है। एंड ऑफ द डे क्या वो वहीं के वहीं खड़े होते हैं। कभी आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ा, जो जितना मर्जी उनको समझा ले, कितनी आप दलाइल दे लें, उनकी नहीं समझ में आती बात, वो वहीं के वहीं होते हैं। नहीं, हमने तो बस वही करना है जो हमारे बाप दादा करते, वो कोई गलत तो नहीं करते थे। अल्लाह तआला ने फरमाया सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहम ला याकिलून, वो क्या है, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, तो वो अकल नहीं रखते। बहरे सबसे पहले कहा जाता है, क्योंकि जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा असर करती है ना, पढ़ना भी इतना असर नहीं करता जितना सुनना असर करता है। ये जो आपके कानों के थ्रू जाता है ना, आप वो ही चीज आप पढ़ के देख लें, चाहे आप कभी ऐसे करिएगा, एक लेक्चर सुन के देखें और पढ़ के देखें, आप देखेंगे जो आपने सुना है ना वो ज्यादा असर करता है। तो वो बहरे हैं, यानी इनको आप बताते जा रहे हैं वो कुछ नहीं सुन रहे। बहरे ये नहीं कि वो वैसे डेफ हैं, डेफ नहीं है, मगर ये बातें नहीं उनको सुनती बस। और वो क्या है, गूंगे हैं, यानी हक बात बोलते नहीं, वैसे हर बात बोलेंगे लेकिन जो सही बात है वो नहीं बोलते। और अंधे हैं, वैसे उनको हर चीज नजर आती है, लेकिन आपको मैंने क्या बताया था कि दो चीजें हैं, दो आयात हैं जो निशानियां हैं अल्लाह की, जिनसे आप अल्लाह को पहचानते, एक कुरान में आयात और एक कायनात में आयात। तो चलो अगर आप किसी से सुन के नहीं समझते, कोई आप कोई कोई आपको बता रहा है आपको नहीं वो सुननी, तो कम से कम खुद देख के ही इंसान को समझ आ जाती है, वो देखते भी नहीं है, वो उसमें भी अंधे हैं। आप देखे ना, एक बंदा है अगर उसको हेल्प चाहिए हो तो वो चीख के बोलता है कि मुझे हेल्प करो हेल्प करो, अगर वो वैसे ही चीख नहीं सकता तो कुछ कुछ देख के अपना रास्ता मुतय्यन कर दे, नहीं तो उसको कोई मतलब कोई उसके कोई मदद करने के लिए आता है वो कुछ बोलता है तो उसको वो सुनाई दे देता है, तो चलो उसकी तरफ चला जाए। दो तीन तरीके हैं ना इंसान के मदद हासिल करने के, या तो अपना खुद रास्ता देख के चला जाए, नहीं देख सकता कुछ कोई किसी की सुन ले और रास्ता पा ले, नहीं वो भी पाता तो को किसी को पुकार ही ले कि आओ आओ मेरी हेल्प करो, जब तीनों ही चीजें नहीं है तो वो तो लॉस्ट है ना। हम ला याकिलून, वो अकल नहीं रखते, यानी वो सोचना ही नहीं चाहते, इसलिए कि अगर अकल इस्तेमाल करे ना इंसान को, अल्लाह ताला ने अकल ऐसी चीज दी है, बहुत जबरदस्त चीज है जो इंसान के पास है, जानवरों के पास अकल नहीं है, इसलिए वो जानवर है और हम इंसान है, यही तो फर्क है। और अगर इंसान ने भी अकल इस्तेमाल करनी छोड़ दी तो फिर क्या है, वो जानवर ही है ना। बल्कि फरमाया कुरान पाक में आता है बल हम अदल, बल्कि ये उनसे भी ज्यादा है, उलाए का कल अनआम, ये तो चौपाइयों की तरह है, बल हम अदल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। क्यों उनसे ज्यादा क्यों गए गुजरे, उनके बराबर क्यों नहीं है, इसलिए कि चौपाए भी देखो ये बेचारी बकरी है या कुछ है, और उसको नहीं समझ आ रही चरवाहे की बात, लेकिन वो मानती तो है ना, चल पड़ती है उधर को जिधर को वो हाँ करा, इंसान तेरा तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। अगर नहीं समझ आ रही कुछ नहीं, तो फिर भी इंसान सोच लेता मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन मेरी अल्लाह की बात है, इसमें जरूर कोई भलाई होगी, मैं तो करूंगी तो यही, चाहे मुझे नहीं भी समझ आ रही। तो तुमसे तो जानवर ही अच्छा है, अगर नहीं समझ आ रही कर तो रहा है ना वो जो काम उसको कहा जा रहा है करने को, तुम तो करते भी नहीं।
बल हम अदल, उससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। तो जो अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, सुनना, ये देखे, ये सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जो जहन्नुम के अंदर होंगे, जब उनसे पूछा जाएगा तुम जहन्नुम में क्यों, तो कहते क्या, वकालू लव कुन्ना नस्मा हुआ नाकिलू मा कुन्ना फी अस्हाबे साईर। वो कहेंगे काश हम दुनिया में सुन लेते, और या कोई अकल ही इस्तेमाल कर लेते, किसी किसी की बात अगर नहीं सुननी चलो अपनी अकल इस्तेमाल करके देख लो, खुद अपनी की अकल आपको गाइड कर देगी कि एक खुदा है। तो हम कुछ तो करते, लेकिन ना हमने सुना तो ना हमने अपनी अकल इस्तेमाल की, तो इसलिए आज हम यहाँ पे, अगर हम कर लेते तो यहाँ ना होते। इसलिए हम लोगों को कहते हैं सुन लो एटलीस्ट, सुन लो एटलीस्ट, कहते हैं हमने सुनना भी नहीं, कान ही अपने बंद कर लेते हैं। अगर ऐसों का आप क्या कर सकते हैं जो सुनना भी ना चाहे। आज वो वक्त आ गया है कि अल्लाह की बात को सुनना भी गवारा नहीं है, तो फिर कहाँ से हिदायत मिलेगी। कहते हैं हम पहले से हिदायत याफ्ता हैं, वही शैतान ने ऐसा चाबी दे दी है ना, तो तुम्हें हिदायत की क्या जरूरत है, तुमने कोई कुरान से हिदायत लेनी, तुम वो इतने ही बेवकूफ हो कि तुम कुरान से हिदायत लोगे, तुम्हें तो पहले ही हिदायत मिली हुई है। भला बचपन से तुमने नहीं कुछ पढ़ा, तुम्हारे घर वालों ने नहीं कुछ बताया, उन्होंने सब कुछ बताया हुआ तुम्हें, मुसलमान घराने में पैदा हुए हो ना, तो बस ठीक है तुम्हें सब आता है, अब ये तुम्हें क्या सिखाएंगे। इंसान बड़ा मुतमईन होके बैठ जाता है, हाँ, मैंने क्या सीखना है कुरान से, कोई नई बात मुझे सिखाएंगे, सब आता है हमें। कितनी जबरदस्त थपकी है जो शैतान देता है, तो खुद ही अपने आप को बहरा बना लिया, गूंगा बना लिया, अंधा बना लिया, तो फिर कहाँ से हिदायत पाएंगे। या अय्युहल लदीना आमनू, फिर अब ईमान वालों से कहा जा रहा है। देखें पहले किसको कहा गया, पूरी इंसानियत को, अब किसको कहा जा रहा है, ईमान वालों को। कुलू मिन तय्यिबात, खाओ पाकीजा चीजों में से। अब क्यों नहीं कहा हलाल, इसलिए कि ईमान वाला खाएगा ही हलाल, उसको सिर्फ तय्यिब का कहा गया, तुमने तय्यिब भी देखना। मा रज़क़नाकुम, जो हमने रिस्क दिया तुमको, यानी जो भी तुम्हारे पास रिस्क है ना, ये याद रखना, क्योंकि वो अल्लाह को मानता है ना, ये ना भूलना कि रज़क ना हमने रिस्क दिया तुमको, ये नहीं कि मैंने अपनी कमाई की, मैंने मेहनत की, मैंने दिन रात लगाई है, तो ये फिर कारोबार मेरा इतना बड़ा है, मैंने इतनी जॉब में मेहनत की है ना, तब इतने पैसे मिले, नहीं। रज़क ना कुम, हमने रिस्क दिया तुमको, इसमें से तुम खाओ। आपको पता है कुरान पाक में, ये जो आपने अन्नास का भी पढ़ लिया कि अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को ये फरमाया कि तुम खाओ हलाल और तैयब, ईमान वालों को भी फरमाया कि तुम तैयबात में से खाओ, और पैगंबरों को भी फरमाया या यो रसुल कुलू मिनत तैयबाती वामलु सालिहात, ए रसूलो खाओ तैयबात में से और साले अमल करो। तो रसूलों को अलग हुक्म है, ईमान वालों को अलग हुक्म है, पूरे इंसानों को भी हुक्म है, तो इसलिए ये हुक्म सबके लिए सेम है, ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। और उसके बाद क्या करो, वशकुरू लिल्ला, शुक्र अदा करो अल्लाह का, क्योंकि सार इंसानों को क्यों नहीं, सारों को कहा शुक्र, क्योंकि इंसान जो है ना खाएंगे तो अल्लाह का ही, वो भी अल्लाह का ही खाएंगे, वो शुक्र नहीं अदा करेंगे, सारे नहीं करेंगे। तो ईमान वालों से कहा, ईमान वालों तुम उनसे डिफरेंट हो, तुमने शुक्र अदा करना है अल्लाह का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो। और आबद का मतलब आपको एक और क्या बताया था, गुलामी, अगर तुम अल्लाह के गुलाम हो ना सिर्फ, तो तुम्हें फिर समझ होगी कि मैंने क्या खाना है और मैंने खा के क्या करना है, मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए खाने के बाद। शुक्र, एक मोमिन से मतलूब क्या है, शुक्र। शुक्र क्या है, मैंने बहुत दफा आपको शुक्र का बताया था, मैंने आपको बताया हुआ है शुक्र दिल से भी एतराफ करना कि अल्लाह ने दिया, ये मान लो कि ये अल्लाह ने दिया, मेरी अपनी नहीं, मैंने इतनी अच्छी कोई कुकिंग नहीं की कि इतना जबरदस्त खाना बन गया, अल्लाह ने करा दिया, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। जुबान से भी यही अदा करो,
कि अल्लाह ताला का ही करम, और आपके बॉडी पार्ट्स भी उसके मुताबिक शुक्राने में अल्लाह की फरमाबरदारी करें। तो बेसिकली शुक्र नाम है, शुक्र को अगर दूसरा नाम दिया जाए ना, तो शुक्र नाम है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का। हम फरमाबरदारी करके दिखाते हैं शुक्राने के तौर पर, अल्लाह हमने रियलाइज किया है कि तूने हमें ये सब कुछ दिया है, इसलिए हम तेरी ही मान रहे हैं, समझ आई। और अगर इंसान खाए किसी का और फिर गुण गाए किसी और के, और माथे टेके किसी और के सामने, और तरीकों पे जले किसी और के, और हलाल और हराम पूछे किसी और से, तो मुझे बताएं ये क्या शुक्रगुजारी है। आपका बच्चा आपको कहे कि मैं जी आपका बड़ा थैंकफुल हूं आपने में, और उसके बाद क्या करें, जो आप कहती हूं उसे उलट करता है, तो ये क्या थैंकफुलनेस है। छोटी सी मिसाल से देख लें, यानी हम कहें ना नहीं मैं तो बड़ी शुक्र गुजार हूं अल्लाह की, लेकिन अल्लाह का कोई हुक्म आ जाता आप मानते ही नहीं, ये कौन सी शुक्र गुजारी है भाई, ये शुक्र गुजारी तो नहीं तो ना शुक्रिया। शुक्र गुजारी है कि इंसान फिर झुक जाए, जो अपना मोहसिन है उसके आगे सर ना उठाए। आप समझते हैं कि अल्लाह हमारा मोहसिन है, उसने हमारे पर एहसान किया है ये जिंदगी दे के, ये इतनी नेमतें हमें अता करके जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो शुक्र पता ही तब चलेगा कि जब आप फरमाबरदारी करेंगे अल्लाह की, समझ आई। ये शुक्र गुजारियां नहीं है जो मुंह से बोले जाए, हाँ नहीं नहीं हम शुक्र करते हैं बस, शुक्र है शुक्र है, और उसके बाद नाफरमानियों में भी आगे निकले, ये नहीं शुक्र है। हमारी शुक्र गुजारी का हाल देखें कि हम जितना हमें अच्छा अल्लाह ताला खिलाता है ना, उतनी हमारी नमाज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, उतना ही हम शुक्र ज्यादा करें। लेकिन आप देखेंगे कि जिस दिन हम कोई दावत खा के आए, यहाँ कोई हम शादी पे चले जाएं, उसके बाद हमारी नमाज कैसी होती है, बेस्ट होती है कि जो पहली थी उससे भी गई गुजरी। जमाइयां आ रही हैं, सर घूम रहा है, और फजर तो पता नहीं फिर पढ़ी जाती भी है कि नहीं, तहज्जुद तो वैसे ही जो पढ़ते भी हैं वो भी ना पढ़ी गई। तो हम तो जितनी ज्यादा हमें नेमत मिलती है तो हम उतनी नाशुक्री करते हैं, हम लेट आए थे अब क्या फजर पे तो उठ नहीं सकते। तो शुक्र गुजारी ये नहीं है, अल्लाह ताला ने नेमते दी हैं तो फरमाया कि अब नेमते देने वाले को भी याद रखना। और ये भी ना शुक्रिया कि इंसान खाए किसी का, वो उसकी नेमतों को इस्तेमाल भी करे, इंजॉय भी करे, फिर उसके बाद उसका ये भी ना कभी करे कि उसका उनका जिक्र करे, बल्कि हमेशा रोता रहे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें तो कुछ बचता ही नहीं है, हम तो बस लूटे गए मारे गए, हाय 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 हाय, बस हर वक्त हाय हाय करता रहे, ये भी नाशुक्री है। अल्लाह ताला ये नहीं देखना चाहता। तुम खाते हो पीते हो तो आप शुक्र अदा करो कि शुक्र है अल्लाह ने बहुत दिया है, हमारी औकात से बढ़ के दिया है। आप घर में एक रोटी भी खाते हैं ना, तब भी शुक्र इस तरह से अदा करें, ये नहीं कि हाय भाई महंगाई बहुत हो गई, हाय ये नहीं, हाय नहीं वो, हाय ये, हाय हाय तो सही नहीं है। हाय हाय का मतलब यह है कि हमें नहीं कुछ मिला, आप अल्लाह की शिकायत कर रहे हैं। और इंसानों को इतना कुछ मिलने के बावजूद उनका ये हाल होता है कि जो नहीं मिली होती ना चीज उसी का रोना रोते रहते हैं। अब आप देख लें हमारे यहाँ अक्सर लोग इतना रोना रोते हैं, बस नहीं कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं हमारे पास कुछ नहीं, फिर उसके बाद उनकी शादियां देख लें, फिर उनके पार्टीज में उनके ड्रेसअप होना देख लें, फिर उनके और कई चीजें देख लें, तो आप कहते हैं कि ये किस किस्म की फिर नाशुक्रिया, हर वक्त रोते भी रहना और उसके बाद आप उनके हर तरह की चीजें भी आपके पास हैं, तो ये नाशुक्री के कलिमात नहीं बोलने चाहिए, हमेशा शुक्र गुजार रहे। अब कई लोग कहते हैं ये हमारे गरीब खाने पे आप आए, भाई गरीब खाना क्या जब देखे हो जाएगा तो अच्छा भला गा रहे, नहीं वो कहते हैं ये हमारी आजी है, तो ये आजी के अल्फाज नहीं नाशुक्री के अल्फाज है, गरीब खाना नहीं, शुक्र है अल्लाह ने हमें दिया है, ये गरीब खाने हैं हमारे। तो ये इस किस्म की आर्टिफिशियल आजली आजी की कोई जरूरत नहीं है, ये भी एक बनावट है सिर्फ। इन कुन तुम इया हुताबुन, अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो तो तुम ये काम करो, इसका मतलब ये भी इबादत है कि आप तय्यबात में से खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें उसके बाद खाके। अल्लाह ने खाने से मना नहीं किया, मगर ये बात अल्लाह को अच्छी नहीं लगती जब इंसान खा के फिर ना शुक्रिया करता, फिर कहता है हाय इतना खा लिया, हाय इतना। भाई आपने खाया भी तो अपने आप पे जुल्म किया जब ज्यादा खा लिया, फिर उसके बाद भी हाय हाय करते रहना। इन्नमा हर्रम अलैकुम अलमैतत वद्दम वलहम अलखिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। अब किन चीजों को अल्लाह ताला ने हराम कहा है उनकी लिस्ट बता दी। याद रखिएगा हलाल बहुत ज्यादा है और हराम थोड़ा है। अल्लाह ने हलाल बहुत सारी चीजें करी हैं, हराम की चीजें अल्लाह ने कुरान में बता दी या हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी। अब होना क्या चाहिए? ये नहीं होना चाहिए जैसे आदम अलैहि सलाम के साथ हुआ था कि पूरी जन्नत हलाल थी, सिर्फ एक दरख्त के पास नहीं जाना था और शैतान उनको देखे उसी के पास लेकर गया। तो याद रखिए ये दुनिया में भी ऐसा ही होता है, हलाल इतनी चीजें हैं शैतान उनकी तरफ नहीं ले जाता। कितने ड्रिंक्स हैं आप बताएं हलाल? दूध ले लें, चाय, कॉफियां, आपकी जूसेस, आपके जितने मर्जी आप बना लें, लेकिन शैतान कहाँ, वो गले सड़े जो चीजों की शराब बनती है उसकी तरफ लेके जाता है। हम तो देखे ना, अब कितने जानवर हैं अल्लाह ताला ने हलाल किए, उन सारों को छुड़ा के वो खिंजीर के तरफ लेकर जाता है लोगों को। फिर इतनी अवेलेबिलिटी है जिंदा जानवरों की कि आप उनको जिबा करके खा सकते हैं, लेकिन मुर्दार की तरफ लेके जाता है। तो पता चलता है ना कि इसके पीछे शैतान है, कि जो अल्लाह ने कहा ना उसे उलट कराता है। तो आप देखें यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें पहला क्या है, मईतता, मुर्दार। मुर्दार कौन सा जानवर होता है? वो सब जानवर मुर्दार में है जो जिबा नहीं किए जाएंगे, यानी हलाल है लेकिन जिबा नहीं किए गए, वो तो मुर्दार ही हुए ना, जिबा नहीं किए गए। और वो भी मुर्दार में आ जाता है जिसके ऊपर अल्लाह का नाम ना लिया गया, यानी बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर ना कहा गया, वो भी मुर्दार ही हो गया। और तीसरी चीज ये कि अगर किसी मुशरिक ने उसको चाहे जिबा ही किया है लेकिन फिर भी वो हम नहीं खा सकते, वो भी हलाल नहीं है। यानी सिर्फ मुसलमान का या अहले किताब का, मुसलमान का या अहले किताब का जबीहा खा सकते हैं, ठीक है? तो उसने जिबा किया होगा तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर किसी मुशरिक ने किया होगा, एथीस्ट ने किया होगा, इन्होंने किया होगा तो तब नहीं। हाँ, दो मुर्दार ऐसे हैं जो हम खा सकते हैं। एक है मछली या समंदर का जो भी शिकार, समंदर में रहने वाले जो जानवर हैं, और एक है टिड्डी जिसको लोकस्ट कहते हैं। अब टिड्डी वैसे आपको शायद, क्योंकि वही बात है ना, तय्यब वाली बात आ गई कि हमारा क्या मिलान है, हम क्या चीजें खाते हैं। आपको पता है ये टिड्डी वगैरह ये अफ्रीका में वो सीखों पे डाल डाल के ना, तो कबाब की तरह उसको रोस्ट करके तो वो खाते हैं। अब वहां पे इतने इतने मिल जाते हैं, जाहिर है डेजर्ट्स वगैरह में या इनमें कितनी मुश्किल होती है खाने पीने की, हम अपने तरह से रख के ना सोचे। तो अल्लाह ने ये हलाल किया उनके लिए, वो इतनी सारी जमा कर लेते हैं फिर उनको खा लेते हैं उसके ऊपर भून के। वह दमा और खून, और खून कौन सा, जो बहता हुआ खून है। ये बहता हुआ खून यानी जैसे आज भी कई जगहों पर वो जानवरों की, उनको पता होता है कि किस जगह पे इसके यानी छुरा लगाना है, वो वहां से लगाते हैं, उनकी खास उसकी कोई एक वेन होती है उसको काटते हैं, वहां से खून बहता है, तो उस खून को जमा करके वो गर्म खून पीते हैं, कहते हैं इसके अंदर बड़ी ताकत है। आप साइंस बता रही है कि इनके अंदर कितने तरह के जरासीम होते हैं, लेकिन वो उसको पीते हैं, लेकिन हमारे लिए ये हराम है, ठीक है? हाँ, जो हम अपने घरों में गोश्त लेकर आते हैं, जो जिबा किया हुआ जानवर है उसके ऊपर जो खून लगा रह जाता है वो अब हराम नहीं है, वो बहता हुआ खून नहीं है। जैसे हम कभी गोश्त को धो रहे होते हैं उसमें से भी खून निकलता है, तो वो हम धो देते हैं, तो वो नहीं है हराम। वो जो बहता हुआ खून यानी जिस वक्त आप जिबा करते हैं जानवर को उस वक्त भी उससे खून बह रहा होता है, वो हराम है, वो नहीं आप कर सकते जिस वक्त उसकी गर्दन काटने। अच्छा, फिर अगर पूरी गर्दन भी अलग कर देंगे तो वो भी मईता हो जाएगा, ठीक है? वो भी मईता हो जाएगा कि वो अब इसका खून नहीं बहा, खून बहना जरूरी है। तो एक तो खून बहना जरूरी है जिबा करने के लिए, और एक अल्लाह का नाम लेना जरूरी है, एक जो इसको जिबा करने वाला आदमी है वो मुसलमान हो या अहले किताब हो। ये दो तीन चीजें हमें ज़हन में, जो मुसलमान मुल्क है वहां पे तो जाहिर है मुसलमान ही होते हैं, लेकिन जो दूसरे मुल्क है वहां पे ये चीज देखने की जरूरत होती है। और इसमें खून में दो चीजें जो हैं जो जायज हैं, खून एक कलेजी, क्योंकि कलेजी में भी खून ही सारा होता है ना, और एक तिल्ली स्प्लीन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो वो जायज है खाना, अदरवाइज बाकी खून उसका नाजायज है। और देखिए आज पता चलता है हमें साइंस से भी कि इसमें कितना फायदा है, वो जो जानवर का खून गाश करके निकलता है जब उसको जिबा किया जाता है, तो उसमें कितना फायदा है कि उसका जो फासिद खून है वो सारा निकल जाता है, और अगर उसकी पूरी की पूरी गर्दन काट दी जाए तो उसकी जो राबता बॉडी का ब्रेन के साथ है ना, वो कट जाता है और जहां का जहां खून था वहीं जम जाता है। लेकिन जिस वक्त हमारा जो जिबा करने का तरीका है उस तरीके से काटा जाए तो ब्रेन के साथ कनेक्शन रहता है, फिर खून गश करता है ऊपर बॉडी का पूरा खून, आप देखते हैं कि फिर वो खून निकल जाता है। वलहमल खिंजीर, और खिंजीर के गोश को, आज कुछ लोग बेचारे क्या उनको कहें कि वो कहते हैं, अब वो खंजीर उस जमाने के तो गंदे खंजीर थे, आज जो खंजीर है ना ये बड़ा साफ सुथरा है। तो साफ सुथरा है या नहीं साफ सुथरा, अल्लाह ताला ने जब जिस चीज का कुराने पाक में कह दिया कि ये नहीं खाना, उसके बाद इसका क्या क्वेश्चन रह जाता है। तो खंजीर के गोश्त का मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें उसकी इस्तेमाल कर लो, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन गोश्त मेन चीज होती है ना, तो गोश्त भी आ गया इसमें, हड्डी भी आ गई इसमें, उसकी चर्बी भी आ गई इसमें, कोई भी चीज जिसकी जेलेटन भी आ गई, तो सब चीजें, यानी खिंजीर की चर्बी से वो ऑयल बना लेते हैं, उसके अंदर कोई चीज फ्राई कर रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। वमा अहल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और ये जो पुकारा गया गैर अल्लाह के वास्ते से, यानी गैर अल्लाह के नाम के ऊपर जो जिबा किया गया, पहले वक्तों के अंदर तो मुशरिकीन क्या करते थे कि वो ये अपने बुतों के नाम पे जानवर को जिबा करते थे और बुलंद आवाज से उसका नाम पुकारते थे जो भी उनका बुत होते थे, तो ऐसा जानवर तो हराम है ही, क्योंकि सिर्फ जानवर अल्लाह के नाम के ऊपर कुर्बान किया जा सकता है, अगर अल्लाह के नाम के अलावा किसी के नाम पे भी कुर्बान किया जाए तो वो भी हराम में आ जाता है। इसी तरह बाज दफा ठीक है अल्लाह का नाम लिया जाता है, लेकिन खुशनूदी किसी और की होती है कि किसी और, मिसाल के तौर पे बाज लोग यहां से बैठे हुए वो भेजते हैं जी फलां मिजार पे इतने बकरे जिबा कराते हैं, वो वहीं पे क्यों करा रहे हैं? नहीं अच्छा उनसे पूछें तो वो कहते हैं नहीं जी हम उनको सवाब पहुंचाने के लिए, सवाब पहुंचाना तो कोई भी उनको सवाब, तो यहां पे भी अगर आप जिबा कर लेंगे और आपकी नियत होगी किसी को सवाब पहुंचते तो वो पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पे क्यों कराते हैं? उनकी खुशनुदी की खातिर, ये हमसे राजी हो, हमारा ये काम हो जाए जो फंसा हुआ है, हमारा जो कोई मसला है वो हमारी को मुश्किल आसान हो जाए। या बाज लोगों को ये होता है जैसे वो चढ़ावे चढ़ाते मिजारों पे जाके, ये इन्होंने, इन बाबा ने, इन फ्रा ने, इन साई ने, इन फला ने, इन्होंने हमें ये बच्चा दिया है, तो अब हम शुक्राने के तौर पे चादरें चढ़ाने आए, या शुक्राने के तौर पे हम ये बकरे जिबा करने आए यहाँ पे, तो वो के इन्होंने हमें दिया है, तो ये भी जानवर क्या है? जो भी किसी के लिए जिबा किया जाए वो जायज नहीं है, किसी के नाम के ऊपर। देखिए आप अपने माँ बाप के नाम की तरफ से भी कर सकते हैं कि आप अपने माँ बाप के लिए उनको सवाब मिले, लेकिन आप ये नहीं कह रहे होते कि अच्छा मेरे माँ बाप को ये सवाब मिले तो उनकी खुशनूदी होगी और फिर मेरे ये काम आसान हो जाएंगे, इस तरह का आपका नहीं होता। ऐसे होता ना कि अगर माँ बाप की तरफ से करें कि उनकी उनको सवाब मिलता है तो आपके जेहन में सवाब होता है, लेकिन किसी और बुजुर्ग के लिए ये नहीं होता कि उनको सवाब हो। असल बात अंदर से मसला क्या होता है, अल्लाह तो दिलों की नियतें की हाल जानता है ना, अंदर क्या बात होती है कि ये मेरा काम फंसा हुआ है ये किसी तरह हो जाए, जो उन बाबा जी के नाम की नियाज, उन बाबा जी के नाम के बकरे, और तो ये मामा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह ये नाजायज हो जाता है। और देखें आप जब कहते हैं ना इन्ना सलाती व नुसुकी, नुसुक क्या है? कुर्बानी, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए। यहाँ पे कभी किसी बाबे की, कभी किसी पीर की, कभी किसी फकीर की, कभी किसी फलाने की, उनके नामों की कुर्बानियां हो रही नहीं, सिर्फ अल्लाह के नाम की। हाँ सवाब की नियत आप किसी की भी कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ आप गड़बड़ नहीं कर सकते, ये इंसानों वाला मामला नहीं है कि क्या कुछ दिया अंदर कुछ दिल में कुछ और। अल्लाह को तो पता है कि फलां बाबे का आपको दूर दूर तक उनका तो कुछ पता नहीं है सिवाय उनके नाम के, उनको आप कुछ नहीं जानते, इन्होंने क्या खिदमात अंजाम दी, वो क्या करते थे, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनकी नेकियां कैसी थी, कुछ नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि यहाँ पे किसी ने बताया था, जो यहाँ पे अगर नजर मानता है ना उसकी काम हो जाता, सिर्फ ये जानते हैं। तो इसलिए वहां जाके ही आपने देख देनी, वहां जाके ही आपने बकरे जिबे करने, वहीं पे आपने कोई नियाज देनी है। क्या ये बातें, क्या वहीं पे जाके कुछ सवाब ज्यादा मिलता है, ये किसने कहा? और क्या उनको सवाब पहुंचाने के लिए आपको इतनी वाकई उनसे मोहब्बत है कि उनको आप सवाब पहुंचाना चाहते हैं? और तो किसी को नहीं पहुंचाना चाहते। सहाबा भी हैं, ताबईन भी हैं, बुखारी और मुस्लिम हैं, जिनकी आप किताबें पढ़ के इतना फायदा उठाते हैं, उनको तो कभी नहीं आपने सवाब पहुंचाया। वही बाबा जी जिनका वो मजार है, जहां पे लोगों का ये अकीदा है कि यहां से मुरादें पूरी होती, वहीं पे आपको जाके याद आता है कि हमने इनको सवाब पहुंचाना है। पूरी पूरी दुनिया के लोग खत्म हो गए, और भी तो बहुत हैं लोग जो फौत हुए। तो असल बात ये है कि पीछे अकीदा खराब है, ये मानते नहीं है हम। यहां पे हम गड़बड़ करते हैं ना, और हम लोगों कहते नहीं जी हमने तो सवाब पहुंचाना। इमाम जाफर के नाम की क्यों नियाज दी जाती है? ऐसा नहीं है, उनको तो जानते भी नहीं होंगे। उनसे पूछ लें, उन लोगों से, वो कब पैदा हुए, कब वो फौत हुए, उनके क्या काम थे, उनकी क्या खिदमात थी, कुछ नहीं पता। मगर कुंडे उनके नाम के करने, बस क्योंकि अपने काम जो निकालने। हम इतने सेल्फिश है ना, हम सिर्फ अपने काम निकालना ये मतलब होता है, सवाब पहुंचाने की हमें कोई शौक नहीं होता। वो अब वो जैसे लाहौर में मिजार है हजरत अली हजवेरी का, उनको कहते हैं दाता साहब, दाता दाता देने वाला, दाता साहब ही जाके उनको याद आती है कोई चीज करनी, या दाता साहब को ही उन्होंने सवाब पहुंचाना। आगे पूछ लो उनको, तो यकीन जाने आधे से ज्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इनका असल नाम क्या है। तो ये है औरों के नामों के ऊपर देना, अल्लाह का हक है जिसने दिया है ना, मा रजक ना कुम, रिज्क हमने दिया, नाम पे किसी और के देते हो। ये किसने तुम्हें राइट दे दिया? ये जानवर अल्लाह ने पैदा किए, ये सिर्फ उसके नाम पे कुर्बान हो सकती। अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दे दी कि इनको खा लो, वरना तुम इनको खाते तो तुम्हारे पर गुनाह होता। एक जानवर की तुम जान ले रहे हो, उसको खा रहे हो, गुनाह होना था ना तुम्हारे ऊपर, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दे दी, अल्लाह ने इसको तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, अल्लाह ने जायज कर दिया। अब तुम अल्लाह ताला का ही दिया हुआ वो माल है, अल्लाह ही की मिल्कियत है वो जानवर, उसको अल्लाह के नाम पे नहीं करते हो, किसी और के नाम पे देते हो। उसका क्या हक है कि उसके नाम पे दिया जाए, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा क्यों ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे भी नहीं हम कोई चीज कुर्बान कर सकते। हाँ, सवाब पहुंचाने को आप किसी को भी सवाब पहुंचाए, मगर अल्लाह ताला के साथ ये धोखादही ना करो, झूठ ना बोलो, नीयतों को देखो, सवाब ही पहुंचाना चाहते हो या अपने काम कराना चाहते हो? फमनित्तुरा गैर बागिन वला आदिन फला इस्म अलैह। तो जो कोई मजबूर किया गया, यानी अब यहां पे बताया गया कि अगर किसी इंसान के ऊपर ऐसी हालत आ गई है कि उसके सामने मसलन खिंजीर है, बस यही है, इसका गोश्त है, या शराब ही है, और सिर्फ अगर ये नहीं पीता तो फिर वो मर जाएगा, या अल्लाह ताला माफ करे, आज ऐसी जगह पे भी मुसलमान हैं कि जिनको मजबूर किया जाता है कि तुम खिंजीर खाओ, उनको खाने पे मजबूर किया जाता है, वरना उनकी जान नहीं बचेगी, उनको खिलाया जा रहा है, उनको रोजे नहीं रखने दिए जा रहे, उनको शराब पिलाई जा रही, अब वो क्या करें? तो ये है इज़्तिरारी हालत कि इतना मजबूर कर दिया जाए। गहिरा बागन, वो खुद रगबत वाला ना हो, उसकी खुद चाहत ना हो कि मैं खा के देखता हूं ना, और मुझे कोई परवाह नहीं अल्लाह के हुक्मों की, ऐसा ना हो, वो बागी ना हो, या उसको चाहत ना रखता हो कि चलो अच्छा मौका मिल जाए तो मैं खा ही लूं। वला आदिन, और ना हद से बढ़ने वाला, यानी अब दो चार लुक में खा के जान छूट सकती थी, उसने कहा चलो अब तो मौका मिल ही गया है, इस तरह मुझे इजाजत मिली भी है तो अब मैं अच्छी तरह खाता हूँ पेट भर के, नहीं, फिर भी सिर्फ उतने लुक में खाए जिससे जान बच जाए। अब कोई ऐसी जगह फंस गया है जैसे एक मुर्दार आ जाए, हराम कोई चीज आ जाए, वो फिर उस वक्त अल्लाह की तरफ से इजाजत है, इन अल्लाह गफूर रहीम, फिर अल्लाह माफ करने वाला है, क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए किया ना, उसको कोई शौक नहीं था, गैर बागिन, और ना ही वो कोई हद से बढ़ने वाला था। इन्नल्लदीना यक्तुमूना मा अंजलल्लाहु मिनल किताबी व यश्तरूना बिही थमनन कलीला। अब आगे बात, पहले खाने में हराम की थी, अब ये काम हराम, एक जो जिससे इंसान ऐसा हराम काम जिससे इंसान अपने पेट में हराम डाल रहा है लेकिन वो देखने में हराम नहीं लगता। वो कौन सा काम है? जो इंसान छुपाता है, वो जो अल्लाह ने नाजिल किया अपनी किताब में। बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो नाजिल किया अल्लाह ने किताब में, इनमें यहूद के उलमा तो हैं ही, क्योंकि वो उन्होंने छुपाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां थी उनको छुपा लिया था। लेकिन उनके अलावा जो जो इंसान अल्लाह ताला की बात को छुपा जाए जबकि उसके पास इल्म है, लेकिन वो कहता है नहीं मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी ना, मुझे मस्जिद वाले निकाल देंगे अगर मैंने ये बातें की यहाँ पे, यहाँ की मैनेजमेंट फिर मुझे पसंद नहीं करेगी। वो कहता फिर ये सारे मेरे जो इतने फैन बने हुए हैं, मुरीद बने हुए हैं, जो मेरे इतने स्टूडेंट बने हुए हैं, ये भाग जाएंगे, इनको नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं ना छुपा लूं, मैं बात ना बताऊं, और उस टॉपिक को कभी लेके ही नहीं आता। एक होता है चीज को हिकमतन कि कोई टाइम होता है उस वक्त नहीं कहनी चाहिए, एक टाइम होता है जब इंसान देखे कि हाँ अब ये बात कहने का वक्त है उस वक्त कहे, तो एक मसलहत के तौर पे थोड़ी देर के लिए उसको डिले कर देना वो एक अलग बात है, लेकिन एक छुपा जाना सिर्फ किस लिए? वयश तरुण भी थमनन कलीला, इसलिए कि वो उसके लेते हैं इसके बदले थोड़ी कीमत, ये थोड़ी सी कीमत है ना, कि अगर ये लोग मेरे से चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये तो सारे क्लासें छोड़ देंगे, ये तो मेरे फैन नहीं रहेंगे, इनको ये बातें बुरी लगेंगी, ये मेरे मुरीद नहीं रहेंगे, मुझे कोई कमाई नहीं होगी, इन ये मुझे कोई गिफ्ट नहीं देंगे। तोहफे तहाइफ देते थे ना उलमा को, बड़े बड़े तोहफे तहाइफ दिए जाते थे, उनकी बड़ी वो बड़ी पोजीशंस थी जिनके ऊपर वो थे, और उनको बड़ा कुछ समझा जाता था, तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी अगर मैंने इस टॉपिक के ऊपर इनको कह दिया कि ये तो हराम है, तो ये तो फिर सारे मेरे से भाग जाएंगे, इनको तो ये बातें नहीं अच्छी लगेंगी। तो उस जमाने में यहूद ने ये काम किया था कि वो दीन की बात को छुपा गए थे, हालांकि उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था, फिर भी उन्होंने छुपाया। और दूसरे क्या था कि फतवे देते थे इस तरह के, जैसे एक औरत है अगर उसने चोरी की है तो कहेंगे नहीं इसका नहीं हाथ काटना, क्योंकि वो अमीर औरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा केस आया था तो आपने क्या फरमाया था? सिफारिश आई थी उसकी भी कि ये अमीर औरत है, बड़ी खानदानी औरत है, बहुत बड़े खानदान से है, तो अच्छा तो नहीं लगेगा कि इसका हाथ काट जाए इस चोरी में, तो आपने क्या फरमाया था? अगर तो फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती ना तो उसका भी हाथ काटा जाता, ये होता है इंसाफ, इसको कहते हैं अदलो इंसाफ, सबके लिए हो जो, ये नहीं कि उसको गरीबों के लिए तो बड़ा इंसाफ है कि वो एक तरबूज भी उठा के खा ले तो वो भी उसको भी जेल कर दी जाए। एक बच्चे का इस तरह का वाकया आया था कि उसने तरबूज उठा लिया था एक दुकान से, तो उन्होंने उसको इतना मारा कि हद से ज्यादा, और अमीर लोग तो चाहे अरबों खरबों खा लें तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है। ये वयश्तरूना बिही थमनन कलीला, जो इसके पीछे छोटी कीमत ले लेते हैं, ये थोड़ी कीमत है अल्लाह की आयात को बेच के उसके बदले ये कीमत ले रहे हो, कि तुम छुपाते हो। इसलिए ये है कि हमारे पास भी जो इल्म है हम बता दें, लोगों तक पहुंचा दें, कभी छुपाए नहीं उसको, कभी उसको नहीं रखेंगे आए ये फिर क्या कहेंगे इस्लाम के बारे में। हाँ हिकमत के साथ आपने हर बात करनी है, आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि किस तरह बात को प्रेजेंट करना है, इस तरह भोंडे तरीके से नहीं प्रेजेंट करेंगे दूसरा कराहत ही करने लगे या कोई बात ही आपको ऐसी कह दे, बल्कि सही तरीके से लॉजिक के साथ बात करके करें, उसकी मसलियतें बताएं। तो ये है कि इसको बताना जरूरी है, छुपाना ये बहुत बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है इसकी सजा आप आगे देखें। उलाई का मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार, वो भी हराम खाते थे और ये भी हराम है, ये इतना बड़ा हराम है कि ये लोग अपने पेटों में क्या भर रहे हैं? आग, सिवाय आग के कुछ नहीं भर रहे। लेकिन दुनिया में ना, दुनिया में फिजिकल लॉज हैं सिर्फ, लेकिन यहां पर अगर आप आग का अंगारा मुंह पे रखेंगे तो आपका मुंह जल जाएगा, लेकिन अगर आप हराम का लुकमा खाते भी रहे कुछ भी नहीं होगा, ना पेट में दर्द होगी, ना आपको कोई बीमारी लगेगी, ना को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है खाते रहे हराम, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल लॉज है, आखरत में मॉरल लॉज है। ये जो यहाँ पे खाए में है ना हराम के लुक में, ये वहां जाके फिर क्या बन जाएंगे? आग के इनकार, वो असल में आग थी लेकिन वो दुनिया में नहीं जला रही, ये आग है, वो अपने पेटों में क्या भर रहे हैं इस वक्त, क्या भर रहे हैं? आग भर रहे हैं, आग यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, वहां जाके आग बन जाएगी। जैसा अमल होगा ना आप देखेंगे वैसी ही उसकी सजा भी, ये खाते थे ना, थोड़ी कीमत में बेच के ये खा रहे थे ना, थोड़ी कीमतें ले रहे थे ना, तो ये कर रहे थे। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामत, क़ियामती, और अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा इनके साथ क़ियामत के दिन। या ये क्या मतलब है, यानी अल्लाह की इतनी इनके साथ नाराजगी होगी कि अल्लाह इनसे बात भी करना नहीं चाहेगा, वला युज़क्कीहिम, और ना इनको पाक करेगा। क्योंकि जिसको अल्लाह उस दिन पाक कर दे, गुनाहों से पाक साफ कर दे, वही जन्नत में दाखिल हो सकता है। जो पाक ही नहीं होगा वो कैसे दाखिल होगा। इसके अलावा भी कोई जुर्म है वाकई जिसमें कि अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि ये अपने पेट के अंदर आग भर रहे हैं। हाँ, सूरह निसा में है, जो यतीम का माल खाता है वो भी अपने पेट में आग भरता है। और हदीस में तीन किस्म के लोगों से अल्लाह बात नहीं करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, ना उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो हदीस में है, एक यहाँ पे है ना, ये तो हदीस में भी है। एक जानी बूढ़ा, यानी बूढ़ा भी हो गया था, फिर उसके अंदर वो अब चाहत नहीं रह गई इस चीज की, लेकिन फिर भी उसने जिना किया। एक झूठा बादशाह, यानी वो एक बड़ी पोजीशन पे है, वो एक बादशाह है, उसके पास पावर है, वो पावर इतनी है, वो सच बोले तो उसको थोड़ी कोई कुछ पूछेगा क्योंकि वो बादशाह है, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलता है। और एक मुतकब्बिर फकीर, तो कोई किसी के पास कोई चीज हो तब भी उसको तकब्बुर नहीं करना चाहिए, लेकिन तू तो फकीर है फिर भी तू तकब्बुर कर रहा है। ये तीन है, इनसे तो अल्लाह बात नहीं करेगा। और फिर एक और भी हदीस में आता है जिनकी तरफ अल्लाह नजरे रहमत भी नहीं करेगा, जो जो नेकी करके किसी के साथ एहसान जताता है, जो झूठी कसम करके सौदा बेचता है, और जो अपनी ये जो अजार है, जो अपना कपड़ा है मर्दों के लिए ना, इसको लटकाता है, लटकने नंगे नहीं करता। तो ये हदीस में भी है। यहाँ पे कुराने पाक में ये इन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया इसको छुपाते हैं। वलहुम आदाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उलाइक अल्लदीन अश्तरउ दलालता बिलहुदा, यही लोग हैं जिन्होंने खरीद ली गुमराही। गुमराही क्या है? इल्म को छुपाना। बिलहुदा, हिदायत के बदले। हिदायत क्या थी? इल्म का बताना हिदायत थी। इन्होंने इल्म को छुपाने को प्रेफर किया। इस तरह का मतलब क्या है यहाँ पे, खरीद ली, मतलब ये नहीं कि पैसों से जाकर खरीदी, मतलब ये कि प्रेफर क्या किया इन्होंने, इन्होंने तरजीह किसको दी? इन्होंने दलालत, गुमराही को तरजीह दी हिदायत पे। इसलिए कि देखें, जब इंसान छुपाता है तो पता है इसका कितना नुकसान होता है। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि लोग जाहिल रहते हैं, फिर लोगों को पता ही नहीं हलाल क्या, हराम क्या है, क्या बात सही है क्या। एक बंदे को पता है, वो चुप करके बैठा रहा, नहीं बता रहा। मैंने आपको जैसे पिछली दफा मिसाल दी थी कि अगर आपको पता है इस बीमार है और आपके पास दवा है, आप बीमारों को देख रहे हैं मर रहे हैं, ठीक है, आप आराम से बैठे हुए अपनी दवाई अपने पास लेके, कितने बड़े मुजरिम हुए ना फिर। तो जिनके पास इल्म है, हिदायत का इल्म है, फिर वो किसी को देते ही नहीं है, चुप करके अपने पास रखा हुआ है, चाहे शर्म की वजह से, चाहे लोगों की बातों की वजह से, चाहे लोगों की नाराजगियों की वजह से, या कितनी थोड़ी कीमत ली कि ये लोग मेरे से राजी रहे, बस मेरे से खुश रहे, मैं इसे नाराज ना हूं, मुझे इस तरह मेरी तारीफें करते रहे, मैं तो नहीं इनको कुछ कहूंगी। तो ये बहुत थोड़ी कीमत पे अल्लाह की आयत को बेच दिया। तो अगर उनको बताते तो हो सकता था कोई हिदायत पा लेता, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रेफर किया गुमराही को हिदायत के बदले। वल अजाब बिल मगफिरा, और इन्होंने अजाब लेने को कबूल किया बजाय इसके कि मगफिरत लेते। देखिए, दोनों चीजें मिल रही हैं, चाहे आप बताना चूज कर लें या छुपाना चूज कर लें। छुपाया तो अजाब है, बताते तो मगफिरत पाते। आपको पता है जो कि भलाई की बात लोगों को बताता है, आपको पहले भी यह हदीस बताई हुई है, तो उसके लिए समंदर की मछलियां तक दुआ करती हैं, दुआएं मगफिरत करती हैं, चींटियां अपने बिलों में करती हैं, सुभान अल्लाह। तो उसने मगफिरत को छोड़ के अजाब ले लिया अपने लिए। फमा असबरहुम अलन्नार, कितना इनका सबर है आग के ऊपर, यानी इनको पता है कि ये चीज हमें आग तक लेके जाएगी, फिर भी इनका कितना हौसला है ना, जिसको हम कहते नहीं, कितना हौसला है भाई तुम्हारा, यानी कितना सबर है तुम्हारा, यानी इनके ऊपर ताज्जुब किया गया कि क्या बात है तुम्हारी भाई, कि तुम्हें आग का पता है कि ये चीज आग में लेके जाती है, फिर भी कर रहे हो। ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ये ذَلِكَ, ये क्या, ये इतनी बड़ी सजा इसलिए है कि अल्लाह ने तो नाजिल किया किताब को हक के साथ, इसमें सारा कुछ हक है, इसमें सारी सही बातें हैं, तुमने इसको छुपा लिया, इसका मतलब तुम हक के बारे में कन्विंस नहीं हो। तुम खुद कन्विंस नहीं, जब इंसान खुद ही कन्विंस नहीं होगा तो बताएगा भी नहीं। अगर तुम्हें वाकई पता ही है हक क्या ना, तो तुम इसको छुपाओगे नहीं, थोड़ी कीमत पे बेचोगे नहीं। वह इन लदीन अख्तलफी, और जिन लोगों ने इख्तलाफ किया इसमें, या हुज्जतबाजी की इसमें, बहसें की इस किताब में, लफी शिकाकिम बाईद, वो बहुत दूर निकल गए मुखालफत में या बदबख्ती में, इन्होंने इसमें इख्तलाफ किया, यानी अपनी जिद की वजह से उन्होंने इख्तलाफ किया। अब इख्तलाफ यानी इसी में बहसें करते रहे, ये एक और बात है, ये एक और जुर्म है। एक था ना कि छुपाने का, और एक ये है इसमें इख्तलाफ किया। तो अब वो जब उसके इख्तलाफ करते हैं, तो उसके बाद उसमें इतना आगे निकल जाते हैं, आप कहते हैं फिर हम माने कैसे? अब अगर मान गए तो लोग कहेंगे अच्छा पहले तो तुम ये कह रहे थे, अब तुम मान गए, तो हम तो ये नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें इन आयात को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी सी बात आपको ये जो हलाल हराम की चीज़ों की है, थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं कि हदीस में आता है, जिन चीज़ों को हदीस में भी हराम किया गया वो भी आपको पता होनी चाहिए, जिनमें कुचलियों से शिकार करने वाले जानवर जो, यानी जो इनको भी रोका गया, यानी जो शिकार करने वाले दरिंदे कह सकते हैं, जैसे शेर वगैरह है, चीता है, कुत्ता है, तो इनसे भी रोका गया, क्योंकि इनमें भी दरिंदगी है ना, तो वो जानवर भी मना है। इसी तरह जो पंजों से शिकार करते हैं वो परिंदे भी मना है, जैसे ये उकाब है, चील है, कौवा है, ये पंजों से शिकार करते हैं ना, आपने इनको देखा भी होगा कभी पंजों से, ये उकाब वगैरह को तो देखा होगा आपने, उड़ा के ले जाता है चीज को और फिर पंजों से शिकार करता है उसका, तो वो वाले भी जानवर हराम है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनी।
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد